प्रार्थना सभा यहाँ यूमा में, ये एक शानदार सौभाग्य है कि इस निमंत्रण पर यहाँ फिर वापस आना। हमारा बड़ा अद्भुत समय रहा यहाँ पिछली बार, और जब ये समझ गया कि मुझे फिर वापस जाना है, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इन गवाहियों को सुनकर और लोगों से अच्छे शब्द सुनकर और थोड़ा सा उत्साहित हुआ। बिली ने मुझे बताया कि भाई लास वेगास से जो यहाँ एक सभा चाहते हैं, और यहाँ सभा के समाप्त होते ही तुरंत उनसे मिला। वे कहते हैं हमारे पास समय है कि हम जनवरी में आ सकते हैं फिनिक्स की सभाओं से पहले कि लास वेगास आए, और इसलिए हम हमेशा वहाँ जाना चाहते थे। मैं विश्वास करता हूँ भाई आर्ट विल्सन वहाँ हैं एक लंबे समय से, पहले या अब भी वहीं हैं, और उसने मुझे आने को कहा, और वो बहन विल्सन, मुझे सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए ये समय होगा मैं आ सकूंगा। आप बिली पॉल या भाई रॉय बॉर्डर से मिल लें, मैं सोचता हूँ वो यहीं कहीं हैं। किसी ने कहा भाई रॉय अंदर हैं, भाई पेरी ली या उनमें से कोई भी, वे आपको बता पाएंगे, हमारे आने की तारीख तय कर लें। थोड़ी देर पहले मैंने बहुत से सेवकों को देखा जिनसे कि मिलकर आनंदित हूँ अपने भाइयों से। इच्छा थी कि समय होता कि आपके साथ घर जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास यहाँ प्रदेश के सबसे अच्छे खाना बनाने वाले हैं, ये अच्छा है। और अब भाई पेरी के पास दो रात्रि हैं, उन पर हैं, उनके विरोध में दो नंबर हैं। अब उनमें से एक उस माइक्रोफोन को अंदर बाहर से काट दिया। जब आप इसके दोषी ठहरे भाई पेरी, मैं नहीं सोचता कि आप वास्तव में दोषी हैं, परंतु आप कोई बोलने को तय था, वो एक अच्छा वाला था, और इसलिए तब फिर वो वहाँ गया और बातें कर रहा था। उसने कहा कहिए भाई कॉलिंस को बता रहा था या उनमें से किसी को, कहा भोज अच्छा था, परंतु कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मनुष्य स्पेनिश या कुछ एक मैक्सिकन होना चाहिए, ये बहुत गर्म काली मिर्च जो मैंने कभी चखी, इस प्रकार से चल रहा था और वो शेफ से बातें कर रहा था। उसने कहा मैं बावर्ची हूँ, ये टेक्सास आपके लिए है, हम उसको सीधा कर लें, यहाँ एरिजोना में हूँ थोड़ी देर बाद, क्या हम नहीं, यदि वो हमारे आसपास है। वास्तव में यहाँ बहुत अच्छा है, और मेरा अनुमान है कि ये चुटकुला सा नहीं लगता, परंतु मस्करी का सा भाव है, जो प्रभु में स्वयं में भी परिहास का भाव था, आप जानते हैं। उसने कहा हेरोदेस, जाकर उस लोमड़ी से कह दो आज मैं निकालता हूँ, शैतान को निकालता हूँ, कल मैं पूरा कर दूंगा। इसलिए उसमें परिहास का भाव था, भाई ये हमें आघात नहीं पहुँचाएगा, मैं सोचता हूँ कभी कभार। और अब ये थोड़ी देर हो गई है, मैं अक्सर लगभग 4 घंटे प्रचार करता हूँ, इसलिए ये भाई और बहनों की शिष्टता को सभा में जानते हुए आज रात्रि हम थोड़ा सा छांट देंगे। और बस मैंने टेरी को बताया, मैंने कहा, उसने कहा क्या 2 घंटे टेप को चलाना, मैंने कहा नहीं टेरी ये एक भोज है, मैंने कहा बस 30 या 40 मिनट लोगों से किसी चीज पर बात करें, कि मैं कोशिश करूंगा, यद्यपि हर बार ये जानते हुए जब मैं एक छोटा लड़का था लोग मुझे सुनने के लिए आया करते थे, क्योंकि मैं एक युवा प्रचारक था, बस एक युवक एक व्यक्ति, और वे ये कहते भाई बिली ब्रैनहम आप एक बच्चे से कभी विद्यालय नहीं गए और कोई शिक्षा नहीं, और वे मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी सुनने आते थे, मेरी केंटकी वाली अंग्रेजी, और इसलिए वे मेरा हिट्स एंड हैंड्स एंड टोट्स और आगे चलो। जैसा कि एक सभा में अधिक समय नहीं हुआ, उन्होंने कहा हम सब खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान गाएंगे। मैं खड़ा हुआ और बोला अपने पुराने केंटकी घर के लिए दूर, जो दूर है, केवल वही राष्ट्रीय गान था मेरे लिए जिसके विषय में मैं जानता था, जहाँ तक मेरा संबंध था यही मेरा राष्ट्रीय गान था। इसलिए अब जब हम बड़े हो जाते हैं, यद्यपि भाई हम वो अंदर आता है, आपके पास इससे कुछ अधिक होना चाहिए, समझे, हम लोग लेते हैं। पौलुस ने कहा जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोला और बालक के समान सोचा, आप बालक के समान व्यवहार करते हैं, परंतु जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप अपने कुछ कदम उठाने आरंभ करते हैं और लड़खड़ाते और गिरते और फिर उठते, फिर कोशिश करते, तब आप कुछ देर बाद आप उठते ताकि आप सीधी लाइन में चल सकें। और यही हमें करना है एक क्रूस के सिपाही के समान, अब समय है कि हम सीधी सीधी रेखा में चलें, ठीक सीधे उस महिमा के राजमार्ग पर। क्या हम विश्वास करते हैं कि हम इतिहास के समाप्त होते हुए दृश्यों में जी रहे हैं? मैं सच में विश्वास करता हूं कि प्रभु का आगमन समीप है, संभवतः हमारे सोचने से भी अधिक। इसलिए अब आपके समय के 30 मिनट के लगभग या कुछ, मैं आपका ध्यान उस वचन पर लाना चाहता हूं जिसको मैं अपने विषय के लिए प्रयोग करना चाहता हूं, और यहां कुछ और का उल्लेख करूंगा। घर पर बैठे हुए उस दिन मैं इस विचार के विषय पर सोच रहा था, तब मैंने सोचा भाई मैं नहीं जानता कि इस सारे वचन से मैं बोलूं, मैं इसका भाग उन छोटी सभाओं के लिए लेता जो हम आज रात्रि करने जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जबकि आप भजन संहिता निकाल रहे हैं, वो पहला भजन संहिता 27, मैं पहले 5 पद पढ़ने के लिए लेना चाहता हूं। मैं व्यापारियों के पूर्ण सुसमाचार, व्यापारियों की सभा के लिए ये कहना चाहता हूँ। मेरा भाई पैरी पुस्तक के विषय में बोल रहे थे और आदि और वो नई पुस्तक जो उनके पास है। कितनों का याद है जब हमारे पास टेप था और उस पर फीनिक्स में प्रचार किया था एक बेदारी सभा में। श्रीमानों, क्या यही समय है? अब उस पुस्तक का वही आरंभ था। आप देखिए, जब ये घटित हुआ, वहाँ इस घड़ी के परमेश्वर के लिखे हुए वचन का बहुत ही अलौकिक प्रमाण था, कुछ ऐसा जो हम तक नहीं पहुँच रहा था। हम बस ये बहुत ही वास्तविक था, बातें जो आप ये आपको आश्चर्यचकित कर देंगी और आप पर प्रकट कर देंगी कि वास्तव में क्या हो रहा है। संभवतः आप में से बहुत से अपरिचित इन लोगों से सुनते जो उठे हैं और इस विषय में टिप्पणी करते हैं, इस घड़ी का एक संदेश और आदि आदि, उन्हें इससे क्या मिल रहा है? इस घड़ी की परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो उसने प्रतिज्ञा की है कि वो क्या करेगा, और हम उसे वचनानुसार ठीक वैसे ही प्रमाणित होते हुए देखते हैं जो उसने कहा कि वो ठीक उसी प्रकार से करेगा, पहले से बताया, ठीक उसी तरह से सिद्ध हर बार, क्योंकि ये इसे परमेश्वर कह रहा है। यदि एक मनुष्य, मैं चिंता नहीं करता कि वो कौन हो, इस प्रकार की भविष्यवाणी करने का यत्न करता है, तो 1 करोड़ में से एक ही संयोग होगा। यदि एक मनुष्य आपको निश्चित बात बताए कि ऐसी घटना होगी एक निश्चित समय में, तो 1 करोड़ में से, और फिर स्थान की वहाँ होगा तो 10 करोड़ में से लगभग एक संयोग होगा, और फिर समय की ये होगा और आगे और आगे और इस प्रकार से होगा और ये क्या होगा और आदि आदि, तो ये अनुमान से परे होगा। जब हम इसे इतना सिद्ध होते देखें और हर बार और हर समय, तो फिर ये परमेश्वर है। और फिर हम वापस वचनों में जाते हैं, ये हमें विचित्र सा लगे, परंतु हम ठीक वापस वचनों में जाते हैं बिना ये जाने कि कहाँ देखें, और पवित्र आत्मा इसे निकाल कर लाता है और सारी चीजें एक साथ मिलाता है, एक चित्र बनाता है कि हमें ये दर्शाए कि वो घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं, हम धार्मिक विधानों को बदल रहे हैं, हम सिरे पर हैं। जब कोई राजमिस्त्री कोने को मोड़ता है तो वो ये सरल है, जब कोई कोना मोड़ता है, फिर हर कोई उसी पंक्ति में ईंटें रखता चला जाता है, जैसे कोई निश्चित नामधारी आरंभ होता है और उसी पंक्ति में चलते चले जाते हैं, ये ठीक बात है। परंतु जब आपको उन्हें घुमाना होता है, जब आपको दूसरी ओर मुड़ना होता है, अब परमेश्वर दीवार नहीं बना रहा है, वो एक घर बना रहा है, और उसमें बहुत से कट और मोड़ हैं जिनकी यहाँ इस बाइबल में भविष्यवाणी की है। वे घुमाओ, कोई भी घुमाओ लाने का यत्न कर सकता है, परंतु उसे दिए गए नक्शे के अनुसार होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो इसे फिर से तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम उसकी भलाई के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और आप लोगों की संगति और खुला हुआ द्वार जो प्रभु ने हमें दिया है और उसके व्यापारियों के द्वारा। मैंने सदा यत्न किया है कि मैंने इसमें विश्वास नहीं किया, मैंने नामधारियों में लोगों पर विश्वास किया है, क्योंकि प्रत्येक ने अपने चारों ओर बाड़ा बना लिया है। और जैसे कि मैं विश्वास करता हूँ, ये भाई डेविड की छोटी सी कहावत है इस विषय में कि वे बत्तखें पालते हैं, और कहा नदी आती है और हर एक बत्तख, आप जानते हैं, वे एक दूसरे के साथ संगति करना चाहती हैं, और वे ये नहीं कर सकती क्योंकि वे सब घेरे में बंद थीं, परंतु जब पानी ऊंचा चढ़ जाता है तो ये बत्तख को बाड़े से बाहर तैरने देता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे करने की यही विधि है। क्या ये पानी ऊपर आ रहा है? देखिए, हम उस घेरे से बाहर निकल सकते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। आप जानते हैं, मसीह का वास्तविक प्रेम हमारे हृदयों में है, और ये व्यापारियों का संपूर्ण समाचार मेरे लिए मरुद्यान है, क्योंकि बहुत सी बार मेरे पास भाई हैं, अच्छे भाई, मैं समझता हूँ हर नामधारियों में से जिनसे मैं कभी मिला, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, सारे भिन्न प्रकार के चर्च ऑफ गॉड और नजरीन, पिलग्रम, होलीनेस, अच्छे भाई हैं हर जगह, परंतु बहुत सी बार वे मुझे अपनी समुदाय में नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखिए, ये नहीं कि वे विश्वास नहीं करते, परंतु देखिए, ये उनको उनके संस्था से अलग कर देगा। और जब आप ये करते हैं, निस्संदेह ये यही करता है। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, एक मेथोडिस्ट का भाई मेरे पास आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक अच्छा व्यक्ति, वो दिव्य चंगाई पर एक परिकल्पना लिख रहा था और वो मेरे पास कुछ बातें करने को आया। हम बैठ गए और हमने कुछ बातें की थोड़ी देर के लिए। उसने कहा, हमारे पास आपके विरोध में केवल एक बात है, आप सारे समय उन पैंती कौशलों के आसपास रहते हैं। मैंने कहा, तो फिर मेथोडिस्ट के कलीसियस की जिम्मेदारी ले, मैं आऊंगा। ये तो भिन्न था, समझे? और उसने कहा, भाई निसंदेह मैं तो मेथोडिस्ट की कलीसिया नहीं हूँ, मैं तो उनसे संबंधित हूँ। मैंने कहा, यही बात है, समझे? वे ही एक है पेंटिकॉस्टल, वही जो अपने दरवाजे खोलते हैं, समझे? वे ही हैं जिन्हें मैं ले सकता हूँ, और जितने भी उनमें से दरवाजे खोलेंगे, समझे? क्यों हम आने के लिए तैयार हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय, उसमें कहा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई भी मनुष्य द्वार खोलेगा तो भीतर आऊंगा और खाना खाऊंगा। और वो यीशु था, हम सब जानते हैं कि वो मसीह था, और वो वचन है। ये ठीक बात है, वो वचन है। और इसलिए फुल गॉस्पल बिजनेसमैन एक मरुद्यान है, जहां हम एक साथ आ सकते हैं। इसका खर्च कोई कलीसिया नहीं उठा रही है, वे सब मिलकर कलीसियाओं से लोग हैं, और हम एक साथ मिलकर आते हैं, संगति करते हैं, सारे जगत से, आसपास, कहीं भी। और मैंने संसार में बहुत सी सभाएं, बहुत व्यापारियों की सभाएं संसार में स्थापित करने की सहायता की। मैं इस सौभाग्य के लिए धन्यवादित हूँ कि मुझे दी गई थी। उसमें व्यापारीगण उसका खर्चा वहन करेंगे बजाय, और कलीसियाओं के जो भी वे हैं, वे आना चाहते हैं। परंतु फिर मैंने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि किसी को उसकी कलीसिया से खींच लूं। बस अपनी कलीसिया में रहें और उजियाला फैलाएं, समझे? वास्तविक मसीह बने, आपका पास्टर आपकी सराहना करेगा। एक वास्तविक ईमानदार, वास्तविक संत, कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर में विश्वास रखता है, वो इस प्रकार के व्यक्ति की सराहना करेगा। जी हाँ। अब मैं यहाँ अपने भाई और उसकी पत्नी का और उसकी सभा का इस सुअवसर के लिए धन्यवादित हूँ, और होने पाए ये सभा बढ़े, होने पाए परमेश्वर की आशीषें इस पर ठहरी रहें, और परमेश्वर के हाथों में एक साधन हो कि प्रभु के आगमन के होने से पहले सैकड़ों सैकड़ों लोगों को बचाएं, और बाकी इस सभा के सारे लोग या प्रतिनिधि जो यहाँ इस सभा से हैं। भजन संहिता की पुस्तक से अब मैं एक वास्तविक अनोखे विषय पर बोलना चाहता हूँ। आज रात्रि थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ थोड़े से वचन लिख रखे हैं, और हो सकता है मैंने सोचा आज रात्रि मैं किसी अलग चीज पर बोलने जा रहा हूँ, परंतु देखिए समय जा रहा है, क्यों मैं इस पर अधिक टिकने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पलटा और कुछ और वचन लिए, और मैं उठा लिया जाना इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, समझे? अब हम विश्वास करते हैं कि उठा लिया जाना है। सारे मसीही इसका विश्वास करते हैं जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, विश्वास करते हैं कि एक उठा लिया जाना होगा। अब इसकी कुछ पृष्ठभूमि को पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं 25वां भजन संहिता, मेरा मतलब मुझे क्षमा करें 27वां भजन संहिता 1-5 तक। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझ ही से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में मैं भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रभु उसके वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब आज इस विषय पर बोलते हुए, और हो सकता है आप में से कुछ भिन्न हो जो मार्ग में लेता हूँ, परंतु अब कितने यहाँ इस बात का विश्वास करते हैं कि बाइबल कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए सिखाती है? जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है, ठीक, कलीसिया का उठा लिया जाना। चाहे आप एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या जो भी हैं, पेंटिकॉस्टल, एक उठा लिया जाना होगा। मैं सोचता हूँ कि इसके बोलने में मैं इस बात की कोशिश नहीं करूँगा कि जहाँ मैं लोगों को प्रसन्न करूँगा, मैं इस बात का दोषी कभी नहीं रहा। मैं उस जगह आना चाहता हूँ और कुछ ऐसा कहूँ जैसा कि कहने की अगुवाई अनुभव करूँ, कि मैं सोचता हूँ कि ये आपकी सहायता करेगा, कुछ ऐसा जो परमेश्वर के साथ अनुभव में आपको आगे ले जाए। यदि आप एक मसीही हैं और यदि आप मसीही नहीं हैं तो ये आपको लज्जित करेगा कि आप एक मसीही हो जाएं। और इसी उद्देश्य के लिए मैंने सदा कोशिश की है कि अपने विचारों के साथ मिलान करूं, जैसे कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। अब जैसा कि इन अंत के दिनों में इस शिक्षा में हमने चेतावनी दी है कि इसका तिरस्कार होगा, यदि आप चाहें हम थोड़ा इसे पढ़ें। एक मिनट, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय, एक क्षण के लिए हम इसे पढ़ें। तीसरा अध्याय तीसरा और चौथा पद, आइए देखें कि ये सही है कि नहीं। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं कारण कि ये विषय इतना प्रकाशमान है, क्योंकि यहाँ भविष्यद्वक्ता ने कहा कि अंत के दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और ये बातें कहेंगे। समझे, ये भविष्यवाणी हो गई है। कारण ये कि लोग आज व्यवहार कर रहे हैं जिस प्रकार वे व्यवहार कर रहे हैं, क्यों आप निश्चय ही इसकी आशा कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल ने ये कहा अंत के दिनों में वे ढीठ घमंडी परमेश्वर से अधिक सुख के चाहने वाले धोखेबाज झूठ दोष लगाने वाले निरंतरणहीन भले के बैरी शक्ति के भेष भरते और उसकी शक्ति का इनकार करते, ऐसों से अलग रहना। क्या हम सत्य की नकल को देखें? निश्चय ही जब मूसा मिस्र में गया कि इसराइली बालकों को छुड़ाए, अपने हाथ में एक ही छड़ी प्रमाण के लिए कि स्वर्ग का परमेश्वर उसके साथ और पक्ष में है, उसने आश्चर्यकर्म किए, उसके पीछे नकल करने वाले आए और वही चीज कर रहे थे जो उसने किए। समझे, अब ये दूसरे आए, पहले के आने के बाद वे उसके आसपास आए क्योंकि वे उसकी नकल कर रहे थे जो उसने किया, मूल की नकल कर रहे थे, हम ये पाते हैं। और अब कहते हैं कि भाई ये तो मूसा के दिनों में था, परंतु वही पवित्र वचन कहता है कि अंत के दिनों में वे फिर आएंगे। जेन और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, इसी प्रकार सत्य के विषय में ये भ्रष्ट विचारों के लोग करेंगे। समझे, नकल करने वाले सब प्रकार की बातें कि लोगों को विचलित कर दें। और तब यदि ये उठा लिया जाना जो घटित होने को है, और कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन की पंक्ति में है, वहाँ सदा कुछ ऐसा निकल कर आता है कि गड़बड़ करे, कि यदि वे कर सके। शैतान का यही उद्देश्य है कि ये करे। जैसे कि यहाँ एक भाई लास वेगास की सभा से है, बोला कि शैतान ने कहा है कि संसार उसका राज्य है था और वहाँ उसका मुख्यालय होने के कारण। मैं जानता हूँ शैतान इस संसार का ईश्वर है, आकाश के नीचे हर राष्ट्र उसके द्वारा नियंत्रित है। बिल्कुल ठीक, ये संसार शैतान का है, परंतु यीशु इसे ले लेने का। उसने एक दिन उसे प्रस्ताव दिया था और उसने मना कर दिया, परंतु उसने कहा क्योंकि उसे मालूम था कि आने वाले समय में वो इसका वारिस होगा। ठट्टा करने वाले, इस वचन पर हम कुछ क्षणों के लिए देखेंगे इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। ठट्टा करने वाले, टूसान में लगभग दो सप्ताह पहले मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, जहां इंग्लैंड से दो अंग्रेजों ने ये वक्तव्य दिया, ये अखबार में सबसे ऊपर था, कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना केवल झूठ था। ये पिलातुस और यीशु की बीच की बात है, ताकि वो बन जाए, बस अपने आप को कुछ बनाने के लिए। अब कोई विधि नहीं है कि हम इसे उन्हें गलत प्रमाणित कर सकें, क्योंकि परमेश्वर की हर बात का विश्वास के द्वारा ग्रहण की जाती है, इसका हमें विश्वास करना ही चाहिए। अब वो इस सारे विवरण में आगे बढ़ता है कि ये कैसे किया जा सकता है। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ उस बड़े राष्ट्र लंदन इंग्लैंड में, बल्कि जहाँ वे जॉन वेस्ली और चार्ल्स आरम के दिनों के बहुत से प्रचारक स्पर्जन और वे उन्होंने भूसे के बाजार में सुसमाचार प्रचार किया, वहाँ हर जगह उन्होंने अपने दिनों के संदेश को अस्वीकार कर दिया। और देखिए वे इस दिन में क्या हैं, वहाँ जहाँ भाई विलियम और वे आज रात्रि हैं, यहाँ संसार के सबसे तुच्छ राष्ट्रों में से एक है। मैंने सारे संसार का भ्रमण किया है, मैं नहीं जानता इंग्लैंड के जैसा कुछ अशुद्ध है। यही बात बिली ग्राम ने कही, क्यों उसे अपनी पत्नी को पार्क में से ले जाना पड़ा, वो व्यवहार पुरुष और स्त्रियों के बीच का खुलेआम पार्कों में था। जब मैं इंग्लैंड में था मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो कि इससे अधिक किसी मनुष्य के हृदय को तोड़ेगी जो कि वहाँ इंग्लैंड में चल रहा था। एक समय उसके पास सुअवसर था और एक समय संसार में सुधार लाया, बस दर्शाया कि कैसे ये गिर सकता है। परंतु आप देखिए ये क्या करता है, वो संदेश जो तब आगे गया वह अंग्रेज आज उसी संदेश को पकड़े रहने का यत्न करता है। आज वो काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। कैसे होगा, क्या हो यदि मूसा आए और नूह का संदेश लाए कि हम एक नाव बनाएंगे और नील नदी में तैराएंगे? ये काम नहीं करेगा। और ना ही यीशु का संदेश, उसने मूसा का कार्य किया, और ना ही वेस्ली का संदेश लूथर में कार्य करेगा या लूथर का वेस्ली में संदेश, दोनों ओर से है। और आज हम हमारा अंतिम सुधार पेंटिकॉस्टल था और आज हम उससे हट रहे हैं और पेंटिकॉस्टल का संदेश इसके संग नहीं मिलेगा क्योंकि ये दूसरा दिन है। ये सारा परमेश्वर का वचन है परंतु ये बना रहा है जैसे कि पैर हाथ आ रहे हैं, ये दुल्हन को उठा लिए जाने को तैयार कर रहा है। समझे, उन लोगों को उनके स्थान से न हटाएं, वे अपने संदेश में जिए, वे सारे बाहर आएंगे जो दुल्हन में थे। जैसे कि जीवन डंठल में से होकर गेहूं में जाता है, ये गेहूं के छिलके को छोड़ देता है, परंतु गेहूं अपने आप को गेहूं के दाने में बदल लेता है जो भूमि में गिरा था। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जो जर्मनी ने लिखी थी और आलोचना, उसने कहा संसार की सारी धर्मांधता विलियम बर्नम उसमें सबसे ऊपर है। उसने कहा क्यों, वो कुछ नहीं है सिवाय वो एक जादूगर है, वो ये चीज करता है, देखिए वो मनुष्य नहीं जानता। और फिर वो व्यक्ति एक आलोचक था, उसने परमेश्वर में विश्वास ही नहीं किया। उसने कहा एक परमेश्वर जो अंधकार के युग में बैठ सका और पेट पर अपने हाथों को समेटे रहा और मसीहों के झुंड पर हंसा, अपने ही चेलों का पालन पोषण करने वाला जिसे होना चाहिए, माताएं अपने छोटे बालकों के साथ और आदि आदि, और उन्हें सिंहों को उन्हें खाने दिया और अपना हाथ तक नहीं हिलाया। आप देखिए सांसारिक विचार जहाँ शिक्षा और चीजें इस दर्शन को नहीं पकड़ सकते, उस गेहूं के दाने को भूमि में गिरना ही था जिस प्रकार यीशु को गिरना पड़ा और फिर से जी उठे, इसी प्रकार से पेंटिकॉस्ट की कलीसिया को गिरना पड़ा। इसे भूमि में जाना ही था उन अंधकार के युगों में। कोई भी गेहूं, कोई भी दाना भूमि में जाता है उसे उस अंधकार के समय में पड़े ही रहना है कि उगकर आए, परंतु यह मार्टिन लूथर के युग में फूट पड़ा, वेस्ली से होते हुए आया वहाँ पेंटिकॉस्ट में, अब उसमें से होकर दाने में जाए। और अब नामधारी की विधि जो पीछे छोड़ा है वो बस डंठल थे, इसे जलना है, नामधारी की पद्धति। परंतु वास्तविक दाना गेहूं का जो कि हर उन सुधारों में से होते हुए आया वो दुल्हन में उठाया जाएगा, ये कुल मिलाकर दुल्हन को बनाएगा। अब हम वहाँ इंग्लैंड में पाते हैं, अधिक समय नहीं हुआ उन्होंने क्रूस पर चढ़ने की नकल की, उन लोगों के झुंड ने, वे लंबे उनके साथ लंबे बालों वाले बालक थे और आदि आदि, और चिल्ला रहे थे यीशु पिता ओ, और वे सारी चीजें इस प्रकार का कचरा। अब आप कहते हैं ये लंदन में इंग्लैंड में है, ध्यान दे यहाँ अमेरिका में बीते सप्ताह अखबार में क्या था, कोई दिव्यता में डॉक्टरी महान एक अच्छे विद्यालय से, उसने कहा कि क्रूस पर चढ़ाया जाना झूठा था, कहा कि यीशु ने अपने आप को वैसा बनाया कि उसने एक विषैली घास पी ली थी। और हम ये उत्पत्ति में पाते हैं जहाँ इसके लिए बोला गया ये एक हशीश की झाड़ी जैसा है या कुछ, ये वहाँ पूर्व में पाया जाता था, और यदि आप इसे पीते हैं तो ये आपको नींद में डाल देगा हो सकता है, और आप एक मरे हुए से जैसे हो जाएं, ढीले हर चीज, एक बार में दो या तीन दिन के लिए एक बार में। उसने कहा जब उन्होंने उसे सिरका और पित्त दिया तो ये संभव है कि ये हशीश की झाड़ी हो, और जब उन्होंने किया उन्होंने उसे वही दिया हो और वो ऐसा ढीला पड़ गया जैसे मर गया हो। उन्होंने उसे कब्र में डाल दिया और दो या तीन दिन के पश्चात निश्चय ही वापस आ गया और वो फिर जग गया, ठीक था। कहा कि वो भारत चला गया और कहीं मर गया एक आम मृत्यु से और एक झूठा धर्म बनाने का यत्न किया। पहले स्थान पर वो आलोचना लोगों के साथ क्या मामला है, देखिए ये दिन जिसमें हम जी रहे हैं ठट्टा करने वाले, देखिए भविष्यवाणी पूरी करने के दिन, परमेश्वर ने हर युग में अपना निर्धारित वचन दिया और प्रत्येक ने उस युग में उसे प्रकट किया और उसने उस युग के लिए लोगों को ठहराया कि उस वचन को पूरा करें। हर बार उसने अपना निर्धारित वचन उसके लिए ठहराए हुए मनुष्य, जब उसने मूसा का समय ठहराया इसके लिए मूसा को ठहराया, जब उसने परमेश्वर के पुत्र के लिए समय निर्धारित किया तो वो जन्म ले उसने इसके लिए ठहराया, हर युग उसने अपने पुरुष को ठहराया जैसा कि बाइबल ने कहा कुछ नहीं। यदि परमेश्वर अनंत सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी सर्वव्यापी सर्वज्ञाता, क्यों, वो तो आरंभ से ही सारी चीजों को जानता है इसलिए उसे मालूम है, आवश्यकता से कुछ भी बाहर नहीं है, ये तो हम हैं जो सोचते हैं, ये सब चल रहा है, उसके पीछे वचन में देखें कि वो क्या कर रहा है। तब हमें इसकी समझ मिलेगी। अब जरा सोचें, पहली बात, यदि उस सेवक ने सोचा होता जब उन्होंने उसके मुंह में सिरका और पित्त डाला, उसने ये थूक दिया, उसने इसे नहीं लिया। पहली बात ये है, समझे, बस ठट्टा करने वाले उठे हैं। दूसरी बात, कैसे ये नासरत का यीशु, कैसे उसका जीवन पुराने नियम में भविष्यवाणी में सटीक बैठता है, ये कैसे हो सका? ये बिना परमेश्वर के ठहराए हो ही नहीं सकता। उसका जीवन पुराने नियम की हर भविष्यवाणी में सही बैठता है। दूसरी बात, यदि उन चेलों ने उसे नकली बनाया इस प्रकार से, तो उनमें से हर एक क्यों शहीद हुआ? और यहाँ तक कि चेले पतरस ने कहा, मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर कर दो, मैं उसके समान मरने के योग्य भी नहीं हूँ। कैसे उन्होंने इंद्रियास को लिया और क्रूस पर एक और झुका दिया। हर एक ने अपनी गवाही अपने लहू से मोहर बंद की। उन्होंने उसका विश्वास किया और उससे प्रेम किया और अपने जीवन उसके लिए समर्पित कर दिए। यदि वो धोखेबाज था तो वे ऐसा कभी करते? समझे, आत्मिक उपयोग लोग नहीं समझते। अधिक समय नहीं हुआ, यहाँ एक महान पुरुष था, कोई एक महान रब्बी, जिसने ये लिखा, मूसा जब लाल सागर में से पार हो रहा था, कहा तो ये वास्तव में पानी नहीं था, पानी की कभी दीवार नहीं बनी। कहा ये क्या था? मृत सागर के दूसरे ओर पटेरों की दीवार थी, वो पानी के पटेरों के बीच में से निकला, पानी के पटेरे, वहाँ पानी नहीं था, पटेरे ढेर सारे, पटेरों के सागर में से पार हुए। और बहुत से याजक वर्ग के लोग इसका विश्वास करते हैं, वे इसे मानते हैं। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ जब पहला अंतरिक्ष यात्री गया और वो वापस आया और उसने परमेश्वर का कुछ भी नहीं देखा। इसने सेवकों को भी घुमा दिया, उन्होंने सोचा कि परमेश्वर वहीं कहीं रहता है 100 या 50 मील ऊपर। ओ क्यों, कैसे ये शिक्षा और संसार की बुद्धि ने इस कलीसिया को कूड़े कबाड़ की ओर घुमा दिया। ये शिक्षा और शिक्षा पद्धति, विज्ञान और सभ्यता जो कि शैतान का है, ये शैतान की सभ्यता है, बाइबल ने ऐसा कहा है। और हमारी सभ्यता जो आ रही है उसका इस सभ्यता से कोई मतलब नहीं, इसमें उसका कुछ नहीं है। वहाँ एक अलग सभ्यता होगी इस सभ्यता से, और ये विज्ञान जगत जो आज हमारे पास है, अधिक विज्ञान, वैज्ञानिक हम होते हैं हम, और मृत्यु की चीजों में जाते हैं मारने के लिए, फंदा और सब कुछ। वहाँ उस नई सभ्यता में कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, दुख या कोई दर्द, समझे, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। इसलिए इस सभ्यता को नष्ट होना ही होगा, क्योंकि ये शैतान का है। हम उत्पत्ति 4 में पाते हैं, केन के लोगों ने सभ्यता का आरंभ किया, नगर और शहर बनाए और आदि आदि, और संगीत के यंत्र और विज्ञानी हो गया, और लोग परमेश्वर से और दूर हो गए, फिर भी धार्मिक रहे। परंतु जब शेत के लोग आए, वे आगे बढ़े और प्रभु का नाम लेने लगे। ओ, निपुणता के बारे में बातें करते हैं, मैं यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं हूँ कि कलीसिया के विषय में कुछ कहूँ। और यदि आप यहाँ हैं और इस कलीसिया से जुड़े हैं, तो मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग यहां हैं, जैसे कि दूसरी कलीसियाओं में। परंतु बीते सप्ताह में शरपोर्ट में पढ़ रहा था, जहां की कैथोलिक कलीसिया ने एक वक्तव्य दिया, और देखिए जहां वे सब एक साथ मिलकर महान एक्यूमेनिकल सभा में आ रहे हैं और आदि आदि, ठीक वही पूरा कर रहे हैं जो बाइबल ने कहा कि वे करेंगे, ठीक वैसे ही। अब हम पाते हैं कि उन्होंने कहा, क्यों बाइबल? कुछ प्रोटेस्टेंट बाइबल पर ही टिके रहना चाहते हैं। क्यों कहा बाइबल कुछ नहीं, बस एक पुस्तक है, कलीसिया का एक इतिहास। लगभग 250 वर्ष पहले उसके पास ये साहित्य नहीं था, ये सदा से एक कलीसिया रही है। कहा ये कलीसिया थी, ना कि बाइबल, और बाइबल एक इतिहास है कि कलीसिया ने क्या किया। ये कितना निपुण झूठ है। क्यों? हमारे पास बाइबल 3000 वर्षों से है, पुराना नियम लेखों में लिखा गया, यीशु के आगमन से सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले, बस शैतान की धूर्त बात। और इस दिन में हम पाते हैं, जबकि ये बड़े ठट्टेबाज और बाइबल का उपहास उड़ाने वाले और इसे बाहर निकालने का यत्न करने वाले, परमेश्वर को कलीसिया का न्याय किसी के द्वारा करना है, वो न्याय नहीं हो सकता। वे इस सड़क पर जाकर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते और कहें मैं 20 मील प्रति घंटा के क्षेत्र में 30 मील प्रति घंटा चल रहा हूँ, जब तक कि वहाँ कुछ ऐसा ना हो कि मुझे कोई बताए कि मुझे 20 मील प्रति घंटा की अनुमति है। ये वहाँ होना ही है, और परमेश्वर कलीसिया का न्याय करने जा रहा है, लोगों का न्याय करने जा रहा है किसी दिन। हम ये जानते हैं कि एक न्याय आ रहा है, इसलिए यदि वो कैथोलिक कलीसिया के द्वारा न्याय करने जा रहा है, तो कौन से कैथोलिक के द्वारा? यदि वो मेथोडिस्ट के द्वारा करने जा रहा है, तो बैप्टिस्ट नष्ट हो गए। वो वनस के द्वारा करने जा रहा है, तो टूनेस नष्ट हो गए, समझे? तो वो किसके द्वारा न्याय न्याय करने जा रहा है। उसने कहा वो मसीह के द्वारा न्याय करेगा और मसीह वचन है, इसलिए ये परमेश्वर का वचन होगा जिससे परमेश्वर न्याय करेगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। वो कल आज और सर्वदा एक सा है, समझे? इसलिए वो अपने वचन के द्वारा न्याय करेगा। और अब हम पाते हैं कि इस दिन में जबकि वो बाइबल को बाहर करने का यत्न कर रहे हैं और कलीसिया को स्वीकार करें, बाइबल ये नहीं चाहती कलीसिया, इसलिए कि वे किसी भी प्रकार का मतसार बना लेते हैं और उसके द्वारा चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं उस रात्रि शेरपोर्ट में बोल रहा था प्रभु भोज में, जब उन्होंने बलिदान का मेमना वध किया तो वहाँ उनके बीच कोई खमीर नहीं होना चाहिए। उन सारे 7 दिनों तक कोई खमीर नहीं, खमीरी रोटी नहीं, हर चीज बिना खमीर के। ये 7 कलीसियाई कालों को दर्शाता है जो यहाँ हमारे पास पुस्तक में है, और वहाँ कोई खमीर नहीं। क्या ये कुछ इसमें मिलावट है और हम मत्सार और नामधारी को मिलाते हैं हर चीज परमेश्वर के वचन के साथ, और फिर भी उसे वचन कहने का यत्न करते हैं। 7.5 दिनों में कोई भी खमीर ना हो, और यहाँ तक कि जो आज खाया है उसे कल के लिए ना रखने का यत्न करें, उसे आग से जला दें इसके पहले कि दिन निकले, क्योंकि एक नया संदेश आ रहा है और एक नई चीज। देखिए, इसे पकड़ने का यत्न करें, परंतु ये कलीसिया की मनोस्थिति है। एक बेदारी आगे बढ़ती है, और पहली बात आप जानते हैं, 3 वर्ष के अंदर उन्होंने इस पर संस्था बना ली, एक नामधारी आरंभ हो गया संस्था। परंतु आपने ध्यान दिया, अब ये 20 वर्षों से बढ़ रहा है और कोई संस्था नहीं है और कभी नहीं होगी। ये अंत है, गेहूँ फिर गेहूँ बनकर आ गया है, गेहूँ अपने दाने में आ गया है, छिलका इससे अलग हो गया है, और गेहूँ को पुत्र की उपस्थिति में आना है कि पक जाए। क्या ये विचित्र बात नहीं? अधिक समय नहीं हुआ, पूर्वी तट पर एक बड़ा अंधकार, वे इसे समझ नहीं सके। टेक्सास में अंधकार हो गया बीते सप्ताह, वे इसे समझ नहीं सके। क्या आप अनुभव नहीं करते कि ये एक चिन्ह है? क्या आप नहीं जानते कि राष्ट्र टूट रहे हैं, इसराइल अपने घर में है, और ये चिन्ह संकेत दे रहे हैं कि हम अंत में हैं? इसी समय ये अंधकार हो रहा है, क्या आप नहीं जानते? ये एक चिन्ह है जो भविष्यद्वक्ता ने कहा। जी हाँ, परंतु सांझ के लगभग एक उजियाला होगा कि एक उजियाला सांझ के समय होगा, जबकि अंधकार और चीजें उसी प्रकार से चलती रहेंगी जैसा कि अब है। जरा देखिए ये कैसा अंधेरा हुआ। पोप यहाँ पर आया, आराधनालय के सदस्य, जब वे आपके पास टेप हैं, मैं समझता हूँ आप लोगों ने लिए हैं, कैसे प्रभु ने ये दिखाया उस दिन आराधनालय में, ठीक कहाँ वे कलीसिया युग होंगे और वे कैसे होंगे। मैंने वहाँ बोर्ड पर चित्र बनाया था, वही कलीसिया काल जो आप यहाँ पुस्तक में बने देखते हैं। और यदि वो पवित्र आत्मा उस बड़े अग्नि स्तंभ में न आया होता और वापस उस दीवार पर चला गया और उसका चित्रांकन किया वहाँ स्वयं से, जबकि 300-400 लोग बैठे हुए उसे देख रहे थे, और जैसे ही पोप ने यहाँ के लिए चलना आरंभ किया तो कैसे भी चंद्रमा काला हो गया और उन्होंने उसके चित्र वैसे ही उतारे जैसे यहाँ प्रचार मंच पर थे। अब उसने अपनी यात्रा यहाँ 13 को की, 13 कदम चला, 13 लोगों को प्रभु भोज दिया उस राष्ट्र को जिसका नंबर 13 है, और हर जगह अंधकार हो गया। क्या आप नहीं देखते कि हम कहाँ पर हैं? हम अंत के समय पर हैं। ठट्टा करने वाले अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे, कह रहे हैं समय में कोई अंतर नहीं है, तब से वैसा ही है तब जब से हमारे बाप दादे सो गए। तब जब आप इन घटनाओं को घटते देखो तो अपने सिर उठाना, तैयार हो जाना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मसीह अपनी कलीसिया के लिए आता है। अब वेश का विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये एक वे इस बात को अनुभव नहीं करते कि वे ही हैं जो पवित्र वचन को पूरा कर रहे हैं। लोग वास्तव में अनुभव नहीं करते, इन चीजों को कर रहे हैं और इन बातों को कह रहे हैं, वे वचनों को पूरा कर रहे हैं। कैसे उस कैफा ने किया, वो महायाजक और वे सारे याजक उस दिन में, उन्होंने ठट्टा किया और उसका उपहास उड़ाया, नहीं जान पाए कि वही परमेश्वर जिसके वे गीत गा रहे हैं, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, भजन संहिता 22, मेरे हाथ और मेरे पांव उन्होंने छेदे हैं। मंदिर में ये गा रहे हैं और वो वहाँ क्रूस पर मर रहा है। उन्हें थोड़ा सा ही मालूम पड़ा कि वे ये कर रहे हैं। यहाँ तक कि यीशु ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वचन के द्वारा उनके लिए भविष्यवाणी थी कि अंधे किए जाएं। क्या आपको मालूम है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कलीसिया की अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणी है कि अंधे हों? वचनों में से वही चीज, मसीह बाहर खड़ा है, अंदर आने का यत्न कर रहा है, क्योंकि तू कहता है मैं धनी हूँ और किसी बात की घटी नहीं है। तू नहीं जानता कि तू अभागा, कंगाल, तुच्छ, नंगा और अंधा है, और ये नहीं जानता, प्रकाशित वाक्य 3। आप वही हैं, फिर से अंधेपन में परमेश्वर की चीजों पर पैर पटक रहे हैं, जैसे कि यदि उनका इससे कोई मतलब नहीं, ठट्टा और उपहास कर रहे हैं, यही जो बाइबल ने कहा। परंतु कलीसिया के लिए दुल्हन उठा लिया जाना उसके लिए प्रकाशन है। उस पर यह प्रकाशित किया गया है, प्रकाशन मसीह की सच्ची कलीसिया के लिए, वे उठा लिए जाएंगे, इस प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये प्रकाशन है क्योंकि विश्वास प्रकाशन है। आपको प्रकाशन नहीं मिल सकता बिना इसके ये विश्वास ना हो। विश्वास प्रकाशन है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आप पर प्रकट किया गया है। विश्वास एक प्रकाशन है। विश्वास कुछ ऐसा कि ये आप पर प्रकट किया, जैसे कि ये अब्राहम पर था, जो कि किसी विपरीत चीज से जो उस पर प्रकाशित किया गया, यद्यपि कि वो ऐसा नहीं था। अब विश्वास, यही जो विश्वास है, परमेश्वर का प्रकाशन कलीसिया प्रकाशन पर बनी है, सारी समस्त देह। यहाँ कुछ सप्ताहों पहले मैं एक अच्छे बैप्टिस्ट सेवक से बात कर रहा था। वो मुझसे कुछ चर्चा करने आया था। उसने कहा, मैं आपको एक मनुष्य के समान पसंद करता हूँ, परंतु बोला, आप कुछ गड़बड़ा गए हैं। मैंने कहा, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे सही कर दें। उसने कहा, वचन से? उसने कहा, हम भाई ब्रैनम कभी भी योग्य नहीं होंगे जब तक हम वचन पर वचन, उस पर वचन बिल्कुल सही ग्रीक के साथ और आदि आदि। मैंने कहा, ओ श्रीमान, आप इससे अच्छा जानते हैं। मैंने कहा, यहाँ तक कि निश्चयन सभा में, जहाँ तक कि बीते समय में मसीह की मृत्यु से 300 वर्ष, वे अब तक विवाद करते रहे कौन सा ग्रीक का विद्वान सही है। आप जान सकते हैं, ये प्रकाशन है सारा का सारा मामला। उसने कहा, मैं प्रकाशन को नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। मैंने कहा, तो फिर आप कैसे मसीह को स्वीकार कर सकते हैं? उसने कहा, क्यों, बाइबल ने कहा, वो जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, उसके पास अनंत जीवन है। मैंने कहा, ये सच है। ये भी कहता है कि कोई मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कहता सिवाय उस प्रकाशन के द्वारा जो पवित्र आत्मा का है, समझे? फिर पलट कर वापस प्रकाशन पर आता है। ये बाइबल में प्रकाशित होना ही है। केन और हाबिल के पास पढ़ने के लिए बाइबल नहीं थी, परंतु हाबिल पर विश्वास के द्वारा प्रकट हुआ, जो कि प्रकाशन है। हाबिल ने परमेश्वर को केन से अच्छा बलिदान चढ़ाया, जिसकी परमेश्वर ने गवाही दी कि वो धर्मी था। जब यीशु ने मत्ती 16:17-18 में पूछा था, हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, परंतु यदि आप लिखना चाहते हैं, उसने कहा, मुझे मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उनमें से एक ने कहा, आप मूसा हैं, एलिया या आदि आदि। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, धन्य है तू शमौन योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर ये प्रकट किया है। इस पत्थर पर आत्मिक प्रकाशन कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, वो परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर देहधारी हुआ और संसार पर प्रकट हुआ। वो संसार में था, परमेश्वर मसीह में था, संसार को अपने में मिला रहा था, प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर क्या है मांस की देह में। तू मसीह है, वो अभिषेक, परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा, मांस और लहू ने तुझ पर ये कभी प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो कि स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वचन का प्रकाशन अपनी ऋतु में। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बाइबल की अंतिम पुस्तक है। अविश्वासी के लिए ये मोहरबंद है। उसमें बाइबल कहती है 22वें अध्याय में, जो कोई इसमें एक शब्द भी निकालेगा या इसमें एक शब्द बढ़ाएगा, तो मैं जीवन की पुस्तक में से उसका भाग निकाल दूंगा। हम ये अनुभव करते हैं तो ये कुल मिलाकर विश्वासियों के लिए दिया गया है, और ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खोलता है और प्रकट करता है कि इस सारी पुस्तक का लेखक कौन है। वो वहाँ पर अल्फा और ओमेगा दिखाई पड़ता है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह वैसा ही है, ठीक उसमें सीधे सीधे होते हुए, और अपने संपूर्ण भेद को स्वयं ही प्रकट करता है, आने वाली कलीसियाई युग की योजना, और उसे 7 मोहरों से बंद कर दिया। अब पुस्तक लिखी गई थी, परंतु तब याद रखें, ये 7 मोहरों से बंद की गई, और ये 7 मोहरें खुलनी नहीं थी, प्रकाशित वाक्य 10, जब तक अंतिम पृथ्वी के दूत का शब्द न आ जाए इस पृथ्वी पर, प्रकाशित वाक्य 10:7, समझे? और अंतिम स्वर्गदूत के संदेश के देने के दिनों में 7वां दूत, उस युग में परमेश्वर के भेद खुल जाएंगे, यही और यही युग है जिसमें हम रह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम लुदिकियाई के युग में जी रहे हैं, इसके लिए कोई और युग नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए हम लुदिकिया युग में जी रहे हैं, और ये 7 मोहरें जिसने इस पुस्तक को पकड़ा हुआ है, लोगों के लिए एक भेद है। उस दिन इसे खुलना चाहिए, यही जो उसने प्रतिज्ञा की है। अब ये वचन के बाहर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वचन में कुछ मिला नहीं सकते, इसे हमेशा वचन ही होना है। परंतु प्रकाशन को इसका सत्य प्रकट करना है। ये क्या है? इसका बाकी वचन के साथ ठीक समायोजन होना है, और फिर परमेश्वर इसे सत्य प्रमाणित करता है। समझे? परमेश्वर को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अपना अनुवादक है। वो अपना अनुवाद जो उसने कहा उसे घटित करने के द्वारा जो घटित होता है करता है। जैसा कि उसने आरंभ में कहा, उजियाला हो जाए, और वहाँ उजियाला था। इसके अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रमाणित है। अब उसने इन अंत के दिनों में निश्चित प्रतिज्ञा की है वचन में। क्यों? ये वो था कि इस प्रकार से यीशु परमेश्वर का पुत्र था, उसने उसे भेजने की प्रतिज्ञा की है। जब वो अपने दिनों में यहाँ पृथ्वी पर था और लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके, उसने कहा पवित्र शास्त्र में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें अनंत जीवन है, और ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं, तो मेरा विश्वास ना करो। परंतु यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तो कार्यों का विश्वास करो जो मैं करता हूं, क्योंकि वे गवाही देते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, तो फिर वेस्ली के युग में वे काम जो उसने किए इस बात की गवाही दी कि वो कौन था। लूथर के युग में सुधार पर, क्यों? निश्चय ही इसने गवाही दी कि वो कौन था। पेंतिकोस्तल के दिनों में वरदानों का फिर वापस आना, अन्य भाषाएं बोलना, शैतान को बाहर निकालना और वरदान, क्यों? इसने गवाही दी। इस विषय में कोई उपहास नहीं। लोगों ने कहा जब ये पहले पहल उठा, मैंने पेंतिकोस्त का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने कहा ये अधिक समय तक नहीं चल सकता, ये जल जाएगा। ये अब भी जल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसे कभी भी बुझा नहीं सकेंगे। परमेश्वर ने कहा ये होगा, ये वचन का वो भाग है, और आप और अधिक इसे बाहर नहीं निकाल सकेंगे। और तब जब दुल्हन को बुलाया जा रहा था, तो आप इसे कैसे बाहर कर सकते थे? ये वचन के प्रकटीकरण का प्रकाशन था जो सच हुआ, और हम उस दिन में रह रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। अपने स्वयं के भेद का प्रकाशन। अब उठा लिया जाना, केवल ये उठा लिया जाना जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये केवल दुल्हन के लिए है। याद रखें, बाइबल ने कहा और बाकी मरे हुए हजार वर्ष के लिए ना जी उठे। ये महान रैप्चर, उठा लिया जाना। मित्रों, अगर उठा लिया जाना नहीं है, तो हम कहाँ हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? हम किस युग में जी रहे हैं? हमारे पास कौन सी प्रतिज्ञा है? एक उठा लिया जाना होने को है। बाइबल कहती है ऐसा होगा, और यदि ये केवल चुने हुए के लिए होगा, चुनी हुई महिला, इस दिन में दुल्हन, ये कलीसिया का खिंचाव। कलीसिया शब्द का अर्थ है बाहर बुलाए हुए, जैसे मूसा ने एक राष्ट्र में से एक राष्ट्र बुलाया। पवित्र आत्मा कलीसिया में से एक दुल्हन बुला रहा है, एक कलीसिया में से, हर नामधारी में से सदस्य दुल्हन बना रहा है। दुल्हन वृक्ष ये है, टेप में दुल्हन का वृक्ष। दुल्हन बाहर आ रही है बुलाई हुई, और यही वाला जो कि दुल्हन का वृक्ष है, बल्कि एक दुल्हन, यही है जो उस उठा लिए जाने में जाने वाले हैं। वो कुछ नहीं, केवल दुल्हन है, चुने हुए, आरंभ से परमेश्वर के द्वारा जाने हुए, पिता के आत्मिक जीन। मैं यहाँ जरा एक मिनट के लिए रुकूं, ये सोचते हुए अधीर हो रहा हूँ, मैं आपको रोकने जा रहा हूँ, आपको अधिक समय तक रोकने जा रहा हूँ। परंतु ध्यान दें, आप में से प्रत्येक लोगों में, क्या आप जानते हैं वर्षों पहले कि आप जन्म लेते, आप अपने पिता के जीन के समान थे? ये ठीक बात है, एक जीवांश, एक बीज आपके पिता में था, जो कि नर लिंग से आया, न कि स्त्री से। समझे? मादा अंडा उपलब्ध करती है, एक सेने का धरातल, परंतु जीवांश से आता है। अब कहें मेरे पिता में या मेरा पुत्र बैठा हुआ है। जब मैं 16 वर्ष का था, मेरा पुत्र मुझ में था, मैंने उसे नहीं जाना, परंतु वो वहाँ था। अब उस सेने के आधार से होते हुए, उस पवित्र बंधन से होते हुए, वो उस छवि में बदल गया। मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके साथ संगति कर सकता हूँ, और वो ठीक उस समय में आया जब सही समय है। अब इस प्रकार से आप में, यदि आपके पास अनंत जीवन है, तो आप परमेश्वर में, इसके पहले कि कभी संसार होता, आप एक भाग थे, परमेश्वर के एक पुत्र, परमेश्वर का फल। उसे उस पुत्र का ठीक ठीक मालूम था कि आप आ रहे थे, उसने आपको उस युग के लिए ठहराया था कि ये हो, और कोई दूसरा नहीं ले सकता था। चिंता नहीं कितने भी नकल करने वाले हों और आदि आदि, आपको वही होना है, क्योंकि वो जानता था कि आपको वहाँ होना है। अब आप प्रकट हुए हैं, अब आप उसके संग संगति कर सकते हैं, और यही जो वो चाहता है, वो संगति की प्रतीक्षा में है कि आराधना करें। परंतु यदि आपका जीवन ने नहीं किया, सदा से परमेश्वर में एक गुण थे, तो आप बस एक मसीहत की नकल हैं। समझे, वे वहाँ पर करोड़ों करोड़ों होंगे, वे बस मसीहत की नकल करेंगे। हाल ही में जो मैंने टिप्पणी की, मैं वहाँ देमास शकेरियन को देख रहा था जब वे पशुओं में मिलावट कर रहे थे। उस परख नली आदि को देखें जो कि डॉक्टरों के द्वारा लिए गए थे, इन चीजों पर ध्यान कर रहे थे। नर के स्वाभाविक उत्खनन से वहाँ से लगभग लाखों शुक्राणु आते हैं नर में से हर बार, और मादा से कुछ लाखों अंडे आते हैं उसी समय। परंतु क्या आप जानते हैं वहाँ छोटे छोटे जीवांश घूमते हैं उनमें लाखों, परंतु केवल एक ही जीवन के लिए आवश्यक होता है और केवल एक अंडा ही उपजाऊ होता है, और वो छोटा जीवांश उन सारे दूसरे जीवांशों के पास से रेंगता हुआ उन सब के ऊपर से होते हुए वैसे ही दिखाई पड़ता है, और उनके ऊपर से होते हुए और उस उपजाऊ अंडे को पा लेता है और उसमें रेंग कर चला जाता है, और फिर सारी बाकी मर जाते हैं। क्यों? कुंवारी के जन्म के विषय में बात करते हैं। ओ, ये कोई आधा भेदपूर्ण स्वाभाविक जन्म नहीं, कैसे परमेश्वर के द्वारा पहले से अभिषिक्त, पहले से ठहराया हुआ है। अब वहाँ पीछे आरंभ में, वहाँ पीछे वर्षों पहले, इसके पहले की समय आरंभ होता, यदि आप नया जन्म पाए हुए मसीही हैं आज रात्रि, तब आप परमेश्वर में थे, अपने पिता में। यही कारण है जब आप इस जीवन में आए और मसीहत को अपनाना, भाई हर चीज गलत चल रही है, आपको आश्चर्य है कि ये ऐसा क्यों है, और ये सब ये आप इस पर आश्चर्य करते हैं। परंतु एक दिन किसी चीज ने आपके ऊपर प्रभाव डाला, ये क्या था? वो जीवन जो वहाँ पर था आरंभ से। और यदि ये जैसे मेरी उकाब की छोटी कहानी के समान, इसे ढूंढता है, उसकी माँ उकाब को ढूंढती है, अपने उस पर मुझे प्रचार करते सुना होगा कैसे वो छोटा उकाब अंडे से निकला मुर्गी के नीचे, परंतु वो उसकी आदतें उन्हें खिलाने का यत्न करना उन चूजों को, वो छोटा उकाब उसे हजम नहीं कर सका क्योंकि वो चूजा नहीं था आरंभ से, तो भी वो उन चूजों के साथ दड़बे में था और चूजों का अनुकरण किया। परंतु वो वहाँ पीछे कूड़े के स्थान में कूड़े देगी और छोटा उकाब इसमें नहीं टिक सका, परंतु हर बार वो कुड़क की आवाज करेगी और सब सारे छोटे चूजे जाते हैं, इसलिए वो भी जाएगा। परंतु एक दिन उसकी माँ ये जानती है कि उसने दो अंडे दिए थे, एक नहीं कहीं तो दूसरा भी होना चाहिए, वो उसे ढूंढने निकली, चारों ओर उड़ रही थी गोले में। अंततः वह पीछे कूड़े की ओर आई और उसने अपना बालक पाया, वो अपने बच्चे के लिए चिल्लाई, ये वो आवाज थी जिससे उसे अनुभव हुआ ये कुछ ठीक मालूम पड़ता है, यही जिसको वो ढूंढ रहा था। देखिए, और तब उसने अनुभव किया कि वो चूजा नहीं था, वो एक उकाब था। और इसी प्रकार हर नया जन्म पाया हुआ मसीही, जब आप आते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने नामधारियों के सदस्य रहे हैं, कितने नाम अपने अपने नाम लिखवाए हैं और आदि आदि, जब वो वास्तविक परमेश्वर का वचन प्रमाणित हुआ और आपके सामने इस प्रकार से सच्चा बना, आपने ठीक वही अनुभव किया कि आप एक उकाब हैं, क्योंकि मुर्गी का ये कुड़ कुड़ करना, आप इसके उसके सदस्य बने और ऐसे और वैसे हो जाएं, ये निरर्थक है, ये वास्तविक है। वचन से वचन मिलता है, जब जीवांश मादा के घर में आता है ये नहीं लेता, आप अपने पिता से ही जीवांश नहीं हो जाते हैं, और फिर अगली बार आप कुत्ते से जीवांश होते हैं, और फिर अगले में बिल्ली से, और अगली में चूजे से, ये सारा का सारा मनुष्य की जीवांश है। और यीशु मसीह की देह वो दुल्हन, उसके देह का भाग है जो कि होगा, वो वचन था, और दुल्हन को भी वचन ही होना है, वचन वचन के साथ मिलता है, वचन से मिलता है। लूथर का न्यायोचित, वेस्ली का पवित्रकरण, पेंटिकोस्टल का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वरदानों का वापस आना और बाकी सबका इसके साथ जाता है, समझे। इसे वचन के ऊपर वचन होना है, जीवांश के ऊपर जीवांश, जीवन के ऊपर जीवन, ताकि दुल्हन का पूरा रूप और कद लेकर आए प्रभु यीशु मसीह का। अब याद रखें, आप एक फल थे, और अब बात यह है जब हम इन चीजों को पाते हैं कि मसीह अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, अब कैसे हम उस दुल्हन में आते हैं, यही प्रश्न है। बहुत से कहते हैं हमारी सभा के सदस्य हो जाओ, उनमें से एक विशेष प्रकार का बपतिस्मा चाहता है, एक ये करवाना चाहता है या वो, एक ने कहा आपको अन्य भाषा में बोलना ही है या फिर आपको नहीं मिला, दूसरे वाले ने कहा आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है, ये वाला कहता है आपको आत्मा में नाचना है, ये कहता है आपको चिल्लाना चाहिए, ये संवेदना हुई तो ठीक है, और फिर तब भी ये गलत है। कैसे एक मनुष्य जो कि, या एक स्त्री या एक बच्चा परमेश्वर का, जिसने परमेश्वर के आत्मा से जन्म लिया है, और परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, जबकि परमेश्वर स्वयं अनुवाद करता और ये कहता है यही है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है, ये यहाँ पर है, ये इसे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है जितना हो सकता है। क्यों? वे देखने के लिए विवश हैं। समझे कैसे मसीह अपने ही वचन का इनकार कर सकता है? और यदि मसीह आप में है तो ये अपने ही वचन का इनकार नहीं कर सकता। तो फिर हम इस देह में कैसे आते हैं? पहला कुरिन्थियों 12, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने इस देह में बपतिस्मा लिया, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा। कि यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये पहला कुरिन्थियों 12:13, और एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने बपतिस्मा लिया, और आत्मा में मसीह का जीवन है। क्या ये ठीक बात है? मसीह का जीवन और किसी भी बीज का जीवन, जो कि वो वचन बीज था, बीज का जीवन लाता है। आप समझे? यदि वो जीवन बीज में है और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस पर आता है, तो ये बीज का जीवन लाने के लिए विवश है। अधिक समय नहीं हुआ, जैसे मैंने फिनिक्स में बताया था, मैं भाई जॉन शेरेट से बातें कर रहा था। मैं वहाँ पर था और उसने मुझे एक पेड़ दिखाया, एक नींबू वंश का। उसने उस पर बहुत सारे नींबू वंश के फल लगा रखे थे और उसने मुझे एक फंडा दिखाया। इस 8 या 9 विभिन्न प्रकार के फल थे। और मैंने कहा, भाई शेरेट, ये किस प्रकार का पेड़ है? कहा, एक संतरे का पेड़। मैंने कहा, क्यों? नींबू और संतरा और यहाँ खट्टा और चकोतरा। उसने कहा, ये सारे नींबू वंश के फल हैं, इनको साटा गया है। ओ, मैंने कहा, मैं समझा, अब अगले वर्ष ये सारे संतरे लाएगा। ओ नहीं, हर पेड़ अपना ही फल लाएगा, हर डाली अपना ही फल लाएगी। आप में से बहुत से फल उगाने वाले जानते हैं, यहाँ इस नींबू वंश की घाटी में ये अपना ही उगाएगी। आप नींबू की डाली संतरे के पेड़ पर लगा दें, ये नींबू उगाएगा, क्योंकि ये नींबू वंश का स्वभाव है, फिर भी ये मूल फल नहीं उगाएगा। और यही जो हमने किया है, हमने मत्सार के साथ कलम सांटी है और आदि आदि, और प्रत्येक में सांटी है। यहाँ कैसे मेथोडिस्ट कुछ और उगा सकता है सिवाय मेथोडिस्ट बालक के? कैसे कोई नामधारी बालक को छोड़ कुछ और उत्पन्न कर सकता है? परंतु यदि उस पेड़ ने अपनी मूल शाखा से कुछ उगाया तो ये संतरा ही उगेगा। और तब यदि परमेश्वर की कलीसिया में कुछ करता है तो ये मूल फिर से वापस वचन पर, ठीक वही ये होना ही है, क्योंकि जीवन जो पेड़ में है और ये अपने ही प्रकार का उगाएगा। अब हम पाते हैं कि अब वहाँ पर वो बड़ी कलीसिया युगों से होती हुई नीचे को आ गई, अपने फल ला रही है, और जैसे डालियाँ खाली हो जाती हैं, वे उन्हें छांटते हैं। संत यूहन्ना 15, अब कभी दाखलता को नहीं छांटा, उसने डालियाँ लेकर उन्हें छांट दिया, क्योंकि वो कोई फल नहीं ला रही थी। और हम यीशु अपने ही फलों को चाहता है, उसकी पत्नी को उसी प्रकार के बालक उत्पन्न करने हैं जो वो है। तब यदि ये बालक उत्पन्न नहीं करती, दुल्हन बालक, वचन के बालक, तो फिर ये नामधारी की बालक हैं। तब उसका पहला प्रेम संसार और नामधारी के लिए है, वो उसमें वापस चले गए, और ये वास्तविक मूल नया जन्म पाए हुए मसीह उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि आप नींबू की शाख लेते हैं और उसमें उसे साट देते हैं तो ये नींबू उत्पन्न करेगी, परंतु ये संतरा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि ये आरंभ से उसमें नहीं है, परंतु ये आरंभ से अभिषिक्त है, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान से पहले से ठहराया हुआ और जन्मा था। इसे संतरा ही उगाना है, ये और कुछ नहीं उगा सकता। परमेश्वर की जीवित कलीसिया के साथ यही बात है। जब समय आता है, हर कोई, आप परमेश्वर को कुछ आरंभ करने दें, हर एक के पास गेंद है और वो चला गया। समझे, ये सदा से इसी प्रकार रहा। अधिक समय नहीं हुआ कि मैं मार्टिन लूथर के इतिहास में पढ़ रहा था, इसमें कहा गया, ये विश्वास करना इतना अधिक कठिन नहीं था कि मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया का विरोध कर सकता था और इसके पार हो सकता था, परंतु कहा कि विचित्र बात ये थी, वो अपने सिर को उन सारी धर्मांधता की बातों से ऊपर रख सकता था जो उसकी बेदारी में उसके पीछे थे, और तब भी अपने न्यायोचित पर सीधा खड़ा था। समझे, हर चीज नकल करना और सारी चीजें उसके पीछे पीछे चली। श्रीमती सैंपल मैकपर्सन, एमी सैंपल मैकपर्सन को देखिए, जिसने अपना मंदिर यहीं रखा था। हर प्रचारक महिला के पंख थे और बाइबल को भी उसी प्रकार से साथ रखा, बस एक शारीरिक नकल। वे मूल नहीं हो सकते थे, इसी प्रकार से कलीसियाएं भी नहीं हो सकती थीं। आप नगर में किसी कलीसिया में कुछ होने दें, दूसरी कलीसिया सहन नहीं कर सकती, उन्हें भी मिलता है। समझे, वे आरंभ वाले नहीं रहे। परमेश्वर का वचन मूल है, ये वचन है, और इसे अपने ही प्रकार को उत्पन्न करना है, अपने ही प्रकार का, अपनी ही ऋतु में चुना हुआ, पिता परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराया हुआ। अब हम कलीसिया में कैसे आ सकते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, मसीह की देह में जो कि दुल्हन है वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें बपतिस्मा लिया। अब आइए ध्यान दें कि हम अंतिम युग में हैं या नहीं। अब यदि हम वापस उत्पत्ति में जाएं तो हम पाते हैं लगभग पांचवें अध्याय में, आप लूका भी निकाल सकते हैं और देखें, हनोक नूह से सातवां था। हनोक यहाँ हम सर्प वंश को पकड़ते हैं क्योंकि यदि केन हाबिल का पुत्र था तो वो आठवां था, समझे। परंतु बाइबल में ये कहीं नहीं कहा गया कि केन हाबिल का पुत्र था, यानी केन या केन आदम का पुत्र, क्योंकि बाइबल ने कहा वो उस दुष्ट से था और आदम दुष्ट नहीं था, समझे, वो उस दुष्ट से था। अब हम यहाँ पाते हैं कि हनोक नूह से सातवां था जो कि कलीसिया कालों का प्रतीक है। अब बाकी छह लोग उससे पहले के मर गए, परंतु हनोक का रूपांतरण हो गया, हनोक उठा लिया गया। सातवां ये दर्शा रहा है कि सातवीं कलीसियाई काल जिसे उठा लिया जाता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सातवीं कलीसियाई काल में हैं, हम सब ये जानते हैं। अब सातवीं कलीसियाई का काल जिसमें उठा लिया जाना है, वे सारी छह मर गईं, परंतु हनोक का रूपांतरण हुआ क्योंकि वो नहीं मिला, परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परंतु हनोक का उठाया जाना उन सब बाकियों का प्रतीक था जो मर रहे थे, परंतु वो अंत समय की दुल्हन बुलाई जाएगी बिना मृत्यु के उठा लिया जाना, सातवीं कलीसिया युग में बुलाई जाएगी, जो कि अब हम अपने इस युग को लिपिबद्ध करते हैं। ओ प्रभु, आइए इसे और गहराई से देखें, समझे। और अब यहाँ भी सातवीं कलीसिया युग का प्रतीक है जो कि प्रकाशित वाक्य 10:7 में है कि पुस्तक का वो महान भेद सातवें सरदूत के संदेश से खोल दिया गया है। अब वहाँ एक संदेश वाहक है जो सदा ऊपर से है और एक संदेश वाहक पृथ्वी पर है। अंग्रेजी शब्द एंजल का अर्थ एक संदेश वाहक है। और सातवें दूत के संदेश में जब वो अपनी सेवकाई को प्रमाणित कर रहा है, तब जब वो अपनी सेवकाई का शब्द देता है, ना कि जब वो आरंभ हो चुका। यीशु जब वो आरंभ कर चुका, उसने बीमारों और दुखियों को चंगा करना आरंभ कर दिया। ओ वो महान रब्बी, वो एक भविष्यद्वक्ता है, हर कोई उसे अपनी कलीसिया में चाहता था। परंतु एक दिन जब वो बैठ गया और बोला मैं और मेरा पिता एक हैं, तो ये भिन्न था। और जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। क्यों? वो एक नरभक्षी है, समझे, ये भिन्न था। उसने इसकी व्याख्या नहीं की, वे पहले ही उसके युग में परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण और प्रमाण देख चुके थे और उन पर सिद्ध कर दिया कि वो उस युग का संदेश वाहक है और उसे किसी भी चीज की व्याख्या नहीं करनी थी। वे चेले भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने विश्वास किया, चाहे वे इसे स्पष्ट कर पाए या नहीं, वे शांत बैठे रहे और उसका विश्वास किया। वे कैसे ये बता सकते थे कि वे उसका मांस खाने जा रहे हैं और उसका लहू पीने वाले हैं? क्यों? ये उनके लिए करना असंभव था, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया क्योंकि वे ठहराए हुए थे। यीशु ने कहा उसने उन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुना हुआ था, समझे। उन्होंने उसका विश्वास किया, चाहे वे इसकी व्याख्या कर सके या नहीं, उन्होंने फिर भी विश्वास किया। अब ध्यान दें, सातवीं कलीसियाई काल में जब सातवां दूत अपना शब्द देना आरंभ करेगा, तब परमेश्वर की गुप्त बातें प्रकट की जाएंगी। वे मोहरें कि वे सुधार करने वाले जो उनके पास समय था। लूथर अधिक समय तक नहीं जीवित रहा, न ही वेस्ली। वे युग अधिक लंबे नहीं रहे, उन सुधारकों के युग। उनके पास उस दिन का संदेश था और लोग समझ गए और उसे नामधारी कर दिया। और ये क्या है? आप प्रकृति से कभी आगे नहीं निकल सकते। प्रकृति सदा गवाही देती है, परमेश्वर प्रकृति के साथ साथ चलता है, इसे होना ही है। जैसे सूरज प्रातः उदय होता है, ये नया जन्मा बालक है, ये निर्बल, इसमें इतनी गर्मी नहीं है। 10 बजे ये हाई स्कूल से बाहर आता है, दिन के बीच में ये जीवन में प्रवेश करता है। दोपहर बाद 3 बजे ये बूढ़ा होने लगता है, 5 बजे ये मर रहा है, फिर से बूढ़ा कमजोर वापस कब्र में जा रहा है। क्या ये इसका अंत है? अगली सुबह ये फिर उदय होता है, समझे। पेड़ों को देखो कैसे वे अपनी पत्तियां निकालते हैं और हर चीज जो वे करते हैं। अब हम पाते हैं पत्तियां पेड़ पर से गिर जाती हैं, वापस चली जाती हैं। क्या जीवन पेड़ की जड़ में चला जाता है? क्या ये इसका अंत है? अगले वसंत में फिर नए जीवन के साथ आती है। अब कलीसियाओं पर ध्यान दें, कैसे सुधार के चलते ही वही चीजें की ये उठी। वो गेहूं का बीज भूमि में गिर गया और सताव के अंधकार के युग में मर गया, ये भूमि में चला गया। इसे मरना ही था। कोई भी मनुष्य जो आत्मिक है इसे देख सकता है। जब तक कि वो बीज मरकर सड़ ना जाए और ये अकेला रहता है और इसे भूमि के अंदर जाना ही है। उस अंधकार के युग में ये वहाँ सड़ी हुई दशा में पड़ा रहता है और फिर दो छोटी छोटी पत्तियों के साथ लूथर वाले युग में आता है। लूथरन कलीसिया युग बहुत सारी पत्तियाँ निकालता है, जिंगली और आदि आदि, और फिर वहाँ से फुंदना निकलता है जो कि जॉन वेस्ली था, वो महान मिशनरी युग। ये फिर गिर जाता है, उसमें से वो धोखे वाला युग निकलता है, वो पेंटेकोस्टल युग, वो गेहूं का दाना। जो क्या कोई यहाँ है जिसने कभी गेहूं उगाया हो? आप गेहूं को देखें, जब आप उसे देखते हैं, जब आप वहाँ जाकर कहते हैं मेरे पास गेहूं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास गेहूं है। इसे सावधानी के साथ खोलें और देखें, आपके पास गेहूं बिल्कुल नहीं है, आपके पास ऊपर वाला भूसा है। क्या यीशु ने हमें मत्ती 24:22 में चेतावनी नहीं दी? अंत के दिनों में दो आत्माएं इतनी समीप होंगी कि ये चुने हुओं को धोखा दे दे, स्वयं गेहूं को, यदि ये संभव था। समझे? अब ध्यान दें, ये ले जाने वाला है। अब जीवन जो लूथर में से होता हुआ आया और जो वेस्ली को बनाता है, और वो जीवन जो वेस्ली में से आता है जो पेंटिकॉस्ट को बनाता है, और वो जीवन जो पेंटिकॉस्टल से निकल कर आता है गेहूं को बनाता है। परंतु देखिए, वे इसे आगे ले जाने वाले थे, समझे? मूल जीवन इसमें से होते हुए निकलता है, संदेश होकर निकलता है, परंतु ये गेहूं में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि गेहूं आता है और सारी चीजें मिलकर उठा लिए जाने में, यहाँ इधर चोटी पर दुल्हन स्वयं में प्रत्येक युग में निकल कर आती है, परंतु नामधारी किल्ला मर जाता है, सूख कर मर जाता है। क्या आपने ध्यान दिया इन अंत के दिनों में ये कैसे अब अलग होना आरंभ हो गया? जब वो गेहूं आगे बढ़ने लगा, वो छिलका भूसा उससे अलग होने लगा। अब फिर से उस गेहूं को देखो, जब आप उसे देखते हैं, उसे इस प्रकार से खोलें और उसके अंदर देखें, आपको उसमें गेहूं की कली वहां मिलती है। आपको 30x का कांच या लेंस लेना चाहिए इसे देखने के लिए। गेहूं की छोटी सी कली जो उसमें है, समझे, ये वहाँ पर है, परंतु ये बढ़ना आरंभ करती है। अब भूसे को उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ होना चाहिए कि उसे अवसर दे कि बाहर की ओर आए, परंतु जब ये बढ़ना आरंभ करता है और संदेश फैलने लगता है, तो फिर भूसे का छिलका उससे अलग होने लगता है और जीवन छिलके से निकलकर गेहूं में जाने लगता है, आगे बढ़ता है। हर युग में इसी प्रकार से हुआ। ये प्रकृति को झुठला नहीं सकता, ये यही परमेश्वर की निरंतरता है जिस प्रकार से वो चीजों को करता है। और अब यही वो युग है जिसमें कि अब हम इसमें रह रहे हैं, सातवां कलीसिया युग। अब इसे गेहूं के दाने में ही प्रकट होना है, अंत में एक दूसरी वापसी। अब यदि आप लूका का 17वां अध्याय लें और 30वां पद, उसने कहा, जैसे सादोम के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र स्वयं को प्रकट करना आरम्भ करेगा। क्या प्रकट करेगा? अपना प्रकाशन देगा कि इस दिन में वो क्या है। लोगों पर प्रकट करेगा वो वचन जो उस दिन में प्रकट किया जाना है। लोगों पर प्रकट करेगा पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा, यीशु को अपने मध्य, यीशु को जीवित दिखाता है। और याद रखें, वो अपने को मनुष्य में दर्शाता है, एक मनुष्य। उसने कहा जैसे कि ये था, अब वो वही बाइबल पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति। अब हम उत्पत्ति के अध्याय में ध्यान देते हैं, उस अध्याय में जब यीशु इसके विषय में बात कर रहा है, हम वहाँ पाते हैं कि उसमें अपनी पीठ को तंबू की ओर करके और सारा तंबू में है। उसने कहा, उसने प्रश्न पूछा, उसने विश्वास नहीं किया कि जो घटित होने जा रहा था घटित हो सकता है। उसने कहा, अब अब्राहम, मैं जीवन की ऋतु के अनुसार तुझसे मिलने आ रहा हूँ, समझे। और सारा तंबू में इस बात पर हंसी। उसने कहा, सारा तू क्यों हंसी? तंबू में ये कहते हुए ये बातें कैसे हो सकती हैं? यीशु ने प्रतिज्ञा दी और ये वही था, अब्राहम ने उसे एलोहिम कहकर पुकारा, वो सर्व सामर्थी था। अब बाइबल इस बात की भविष्यवाणी करती है कि अंत के दिनों में ये फिर से होगा, यीशु ने ऐसा कहा है। और जब तुम इस प्रकार से होते हुए देखो तो याद रखें, जब ये उसी प्रकार से होना आरंभ हो जाए जो तब हुआ था, आप जान लेना कि समय निकट है परंतु द्वार पर है। अब संसार को स्वयं देखें, अब सादोम के संसार को देखें, यदि कभी सादोम था, लोगों को देखें, उसी मिलावट से दूषित हो रहे हैं, उनके विचार दूषित हैं, वे नहीं जानते कि आम व्यवहार कैसा होना चाहिए। निर्वासितों को देखें, यौन संबंधी आदि को देखें, और अपनी स्त्रियों को देखें, कैसा क्रोधोन्माद बना हुआ है, क्रोधोन्माद की अशालीनता, हमारी स्त्रियों के बीच अनैतिकता। और केवल हमारी ही नहीं, आप कहते हैं ये मेथोडिस्ट है, ये पेंटेकोस्टल भी है, ये सारे के सारे। अपने लोगों को देखें, बजाय परमेश्वर के वचन पर टिकने के, संस्थाओं के रीति रिवाजों पर टिके हुए हैं, वे वही टिके हुए हैं, बजाय इसके कि बाहर निकल कर आए। जब वे देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को सिद्धता में प्रकट कर रहा है, कारण कि वे अंधे हैं, वे इसे कभी नहीं देख सकेंगे। अब ध्यान दें, इसमें यहाँ घटित होता है जबकि हम जल्दी में हैं। मैं सोचता हूँ कि वो महिला चाहती है कि हम यहाँ स्थान खाली करें। मैंने उसे हाथ हिलाते हुए देखा है, वो किसी और चीज के लिए चाहती है कि खाली करें, इसलिए अच्छा है हम जल्दी जल्दी करें। इसलिए अब ध्यान करें, हनुक कलीसिया का प्रतीक है, वहाँ वो सातवीं कलीसियाई काल का प्रतीक भी है। क्या आप ये सोच सकते हैं, सातवीं कलीसियाई काल? ध्यान दें, शब्द देने के कितने ये विश्वास करते हैं कि सात कलीसियाओं के सात संदेशवाहक हैं? ओह, हम सब इसका विश्वास करते हैं। यदि हम बाइबल का विश्वास करते हैं, यदि हम बाइबल का विश्वास नहीं करते हैं, निसंदेह देखिए हम इसका विश्वास नहीं करते, परंतु वहाँ वो है। अब हम सातवीं कलीसियाई काल में जी रहे हैं, और जब बाइबल ने कहा ये सातवां कलीसियाई युग है, जब सातवीं कलीसियाई काल का दूत अपना संदेश देना आरंभ करता है, तब सारी चीजों के भेद जो तोड़ मरोड़ दिए गए थे इन बीते युगों में होते हुए इस समय में प्रकट किए जाएंगे। यहाँ हम इसे देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने लोगों के बीच में आ रहा है, और ठीक वही कर रहा है अपने संदेश की जो उसने कहा, पुष्टि कर रहा है, वो करेगा। यहाँ अब हम इसे इस अंत के समय में पाते हैं, और सात पहर, जैसे कि सात पहर एक आता है, वो पहले पहर में नहीं आया, दूसरे, तीसरे, चौथे, परंतु सातवें पहर में आया। वो सातवां हनोक था जो कि रूपांतरित हो गया, और नू यहूदियों के बचे हुओं का प्रतीक जो कि पार ले जाया गया। अब बाइबल के समयों में पहर के विषय में बात करते हुए, और रातें घंटों में बटी हुई नहीं थी बाइबल के समय में। अब जरा ध्यान से सुने, क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि वे इस स्थान को चाहते हैं। नहीं, बाइबल बटी हुई नहीं थी, यानी या बाइबल के समय में रात घंटों में बटी हुई नहीं थी, ये पहरों में बटी हुई थी। वहाँ तीन पहर थे। अब पहला पहर 9 बजे से आरंभ होकर 12 तक था, दूसरा 12 से आरंभ होकर 3 तक था, और तीसरा और रात्रि का तीसरा पहर 3 से 6 गिना जाता था। अब हमारे पास 3 है, 3 के 3 जो कि 9 है, अपूर्ण अंक। और फिर हम उठा लिए जाने के लिए वापस 7 पर आते हैं। मैं विश्वास करता हूं जो कि 6 से 7 के बीच घटित होगा, या 6 और 9 बजे किसी प्रातः में, क्योंकि प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी उस चमकदार और बिना बादल की सुबह, जब मसीह में मरे हुए जी उठेंगे उसके जी उठने की महिमा में भागी, जब उसके चुने हुए वहाँ आकाश के पार अपने घरों में जमा होंगे, जब वहाँ पुकार होती है मैं वहाँ होऊंगा। शब्द रैप्चर बाइबल में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, हमने ये शब्द रखा है। बाइबल कहती है उठा लिया जाना। हम या दूसरे थिस्सलुनीकियों में या पहले थिस्सलुनीकियों में इस महान रैप्चर का क्रम लिखा है जो कि अंत के दिनों में घटित होगा। इसे यहाँ सुने, हम ये 13वें पद से आरंभ करने जा रहे हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम्हें दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अब ध्यान से सुने, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान करें, यहां एक महान चीज घटित हुई है, इस पर ना चूके, समझे? अब ध्यान दें, वचन यहां दूसरे थिस्सलुनीकियों में कहता है कि वहां तीन चीजें हैं। ध्यान दें, 13 से 16 पद तक वहां तीन चीजें हैं जो प्रभु के प्रकट होने से पहले घटित होनी है। अब जल्दी से, ताकि हम बंद कर सकें, समझे? पहली चीज घटित होती है, ध्यान दें, एक ललकार, एक शब्द, एक तुरही। आइए अब इसे पढ़ें और देखें यदि ये ठीक है। क्योंकि प्रभु आप ही, 16 पद, स्वर्ग से उतरेगा, एक ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा, और परमेश्वर की तुरही। ये तीन चीजें होंगी, एक शब्द, एक ललकार, एक तुरही, यीशु के प्रकट होने से पहले ये होनी है। अब एक ललकार, यीशु ये तीनों करेगा जब वो उतर रहा है। एक ललकार, ललकार क्या है? ये संदेश जो आगे बढ़ रहा है, पहले जीवन की जीवन रोटी दुल्हन को लाती है। अब परमेश्वर के पास इसे करने की विधि है, और वो कभी अपनी नीति नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आमोस 3:7 उसने कहा वो पृथ्वी पर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो इसे अपने दास भविष्यद्वक्ता पर प्रकट न कर दे, और जिस निश्चित रूप से उसने प्रतिज्ञा की है वो इसे करेगा। अब हम कलीसियाई कालों से होते हुए निकले हैं, परंतु मलाकी 4 के अनुसार हमसे प्रतिज्ञा की है कि राष्ट्र में फिर से एक भविष्यद्वक्ता की वापसी होगी। राष्ट्र में एक भविष्यद्वक्ता, ये ठीक बात है। उसके स्वभाव पर ध्यान करें, वो कैसा होगा? वो सदा परमेश्वर इस आत्मा को 5 बार प्रयोग में लाता है। एक बार एलिया में, एलिशा में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कलीसिया को बाहर बुलाता है और यहूदियों के बचुओं को 5 बार अनुग्रह, ग्रेस, JESUSFAITH, और यह अनुग्रह का अंक है, समझे? ठीक है। अब याद रखें, संदेश की प्रतिज्ञा की गई है, जबकि ये सारे भेद इतने सारे पुरोहितों के द्वारा इकट्ठे कर दिए गए हैं, तो ये सीधे सीधे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, और उसने ठीक यही करने की प्रतिज्ञा की है, समझे? अब याद रखें, प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है, न कि धर्म विज्ञानी के पास। भविष्यद्वक्ता ही परमेश्वर के वचन को परावर्तित करता है। वो कुछ नहीं कह सकता, वो अपने विचारों को नहीं बोल सकता, वो केवल वही बोल सकता है जो परमेश्वर प्रकट करता है। यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता बालाम, जब वो बिकने के यत्न में था अपने अधिकारों को बेचना, उसने कहा कैसे एक भविष्यद्वक्ता कुछ कह सकता है जब तक कि परमेश्वर ही उसके मुख में कुछ डाले। यही चीज परमेश्वर करता है कि आप कुछ नहीं कह सकते, और उसी प्रकार से जन्मे हैं, आप इससे अधिक नहीं कर सकेंगे। यदि आप कर सकते हैं, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता जब आप देख रहे हैं, समझे? आप नहीं सकते, आप अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते जबकि आप सकते हैं, आप कुत्ता नहीं हो सकते जबकि आप मनुष्य हैं, समझे? आप उसी प्रकार से बने हैं। और परमेश्वर भी सदा उन युगों में, इन यशाया, यर्मिया और सारे एलिया, जो युग बीत गए, जबकि पुरोहितवाद के झुंडों ने हर चीज को मिला दिया, वो एक भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, उसे कहीं से भी उठा खड़ा करेगा। वो उनकी किसी अवस्था से संबंधित नहीं होगा, और उसका वचन बोले, दृश्य से हटा और चला गया, परमेश्वर के सत्य के वे कठोर पुरुष। और सदा से यही मार्ग रहा है कि आप बता सकें। उसने कहा, यदि तुम में से कोई आत्मिक या एक भविष्यद्वक्ता हो। अब भविष्यद्वक्ता लोग, यहाँ एक ऐसी चीज है जैसे भविष्यवाणी का वरदान उस घड़ी में, समझे? जी हाँ श्रीमान। अब यदि भविष्यवाणी आती है, दो या तीन को बैठकर और जांचना है कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि कलीसिया इसके पहले इसे स्वीकार करे। परंतु भविष्यद्वक्ता के सामने कोई नहीं बैठता, क्योंकि वो था, वो पूरी रीति से परमेश्वर का वचन था, वो अपने दिन में वो वचन था। आपने परमेश्वर को परावर्तित होते हुए देखते हैं। अब परमेश्वर ने अंत के दिनों में फिर से भेजने की प्रतिज्ञा की है कि दुल्हन को पुरोहितवाद के जंजाल से बाहर बुलाकर लाए। केवल यही विधि है कि ये किया जा सकता है। ये कभी नहीं होगा। कलीसिया मसीह को स्वीकार नहीं कर सकती। हम पेंतेकोस्टल, हम इस संदेश को इस स्थिति में जिसमें आज कलीसिया है, इसको लेकर नहीं चल सकते। हम कैसे ऐसे अंत के समय को लेकर चल सकते हैं जिस स्थिति में आज हम हैं, जबकि हर एक दूसरे के विरोध में है, और सारी चीजें, और पुरोहितवाद, ओ अनुग्रह हो, ये घोटाला है, ये नामधारियों में चला गया। और किसी भी समय मैंने किसी भी इतिहासकार से पूछा कि कुछ भिन्न कहे, हर बार संदेश इस पृथ्वी पर गया, उन्होंने संगठित किया, और जब उन्होंने पहचाना, ये वही मर गया। और पेंतेकोस्टलों ने भी यही किया, उन सब ने किया। पेंतेकोस्टल जो बाहर निकल कर आए, आप असेंबली ऑफ गॉड, जब आपके पूर्वज माताएं संस्थाओं से वहाँ पहले बाहर आए, उस पुरानी आम महासभा में से चिल्लाए और परमेश्वर की महिमा की, और उन चीजों के विरोध में बोले, और आप घूमे जैसे कुत्ता अपनी उल्टी की ओर और सुअर ने अपनी कीचड़ की ओर, और वही किया जो उन्होंने किया। और अब इतने पुरोहितवादी हो गए, आपने अपनी अंतःकरण की सहानुभूति को बंद कर दिया। आपके पास संगति पत्र होना चाहिए इसके पहले कि आप उनसे संबंध रख सकें कठिनाई से। आप वननेस, परमेश्वर ने आपको इसी प्रकार संदेश दिया, बजाय इसके कि आप आगे बढ़ें और नम्र बने रहें और आगे बढ़ते रहें, आपको स्वतंत्र होना ही है और अपने झुंड को व्यवस्थित करें। और आप सब कहाँ हैं? वही थैली, बिल्कुल यही है। और परमेश्वर का आत्मा बढ़ रहा है, मुझ परमेश्वर ने इसे लगाया है, मैं ही इसे दिन और रात पानी दूंगा। कहीं कोई, उसने इन बातों को अभिषिक्त किया है और उसे ये भेजना ही है। पहली चीज आती है जब वो स्वर्ग से उतरना आरंभ करता है, तो वहाँ एक ललकार है। ये क्या है? एक संदेश है कि लोगों को एक साथ लाए। पहले एक संदेश आता है, अब बत्ती ठीक करने का समय है, उठो और अपने चिरागदानों को ठीक कर लो। वो कौन सा पहर था? 7वां, ना कि 6ठा, 7वां। देखो दूल्हा आता है, उठो और अपने चिरागदान सही करो। और उन्होंने किया। उनमें से कुछ को मालूम हुआ कि उनके चिरागदानों में तेल भी नहीं है, समझे। परंतु ये बत्ती के छाटने का समय है, ये मलाकी चार का समय है। उसने क्या प्रतिज्ञा की है? लूका 17, ये वे सारी भविष्यवाणी की ये इस दिन में क्रमवार व्यवस्थित की जा सकती हैं। वचन में हमें ये वहाँ जीवित दिखाई पड़ती है। वहाँ नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीजें वहाँ घटित हो गईं। जब परमेश्वर स्वर्ग में जानता है कि मैं इस प्रचार मंच पर यही मर सकता हूँ, आपको आसपास थोड़ा सा चलना चाहिए। ये जबरदस्त है। जब आप परमेश्वर को स्वर्ग से आते देखते हैं और लोगों के झुंड के सामने खड़ा होता है और वहाँ खड़े होकर अपने आप को घोषित करता है जैसे कि उसने कभी किया, और ये सत्य है और ये बाइबल खुली है, समझे, हम यहाँ पर हैं। नामधारी व्यवस्था मर गई है, ये चली गई, यह फिर नहीं उठेगी, ये जल जाएगी। यही जो आप खेत में भूसे के साथ करते हैं, इससे भागो, मसीह में आ जाओ। ना कहें कि मैं मेथोडिस्ट से हूँ, मैं बैप्टिस्ट से हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल से संबंध रखता हूँ। आप मसीह में आ जाएं। यदि आप मसीह में हैं, तो यहाँ एक भी वचन लिखा हुआ नहीं है सिवाय उसके जो आप विश्वास करते हैं। मैं चिंता नहीं करता किसने क्या कहा है, और फिर परमेश्वर चीजों को प्रकट करता है, क्योंकि आप जब वो वचन पर आत्मा उंडेलता है, क्या घटित हुआ? वैसे ही जैसे किसी और बीज पर पानी डाला जाता है, ये जिएगा और ये अपने ही प्रकार को लेकर आएगा। आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बच गए हैं, नहीं, दूर तक नहीं। इधर देखिए, आप त्रिएकता जीव हैं, आप यहाँ, इधर अंदर, ये छोटा व्यक्ति है, ये प्राण है, अगला आत्मा और अगला देह। अब इस शरीर में आपके पांच इंद्रियां हैं कि अपने संसारिक घर से संबंध स्थापित करें, ये बाकियों से संपर्क नहीं रखता। आपके पास आत्मा में पांच इंद्रियां हैं, यहाँ पर प्रेम और विवेक और आदि आदि, परंतु आप यहाँ से जीते हैं, यही जो आप हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा कि वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसती है? कटीली झाड़ी यहाँ और गेहूँ यहाँ पर है, और उन पर जल डालें और उर्वरक पर रखें और इस प्रकार की चीजें, क्या वो दोनों एक ही जल से जीवित नहीं रहेंगे? निश्चय ही। भाई ये क्या है? उनमें से एक कांटे उगाएगा, क्योंकि वो कुल मिलाकर यही है। वो कटीला पौधा भी अपने हाथों को उठाकर वैसे ही चिल्लाता है जैसे गेहूं। क्या बाइबल नहीं कहती कि अंत के दिनों में झूठे मसीही आएंगे, ना कि झूठे यीशु? अब झूठे मसीही, अभिषिक्त वचन पर झूठे, अभिषिक्त नामधारियों से अभिषिक्त किए हुए, परंतु वचन के लिए नहीं, क्योंकि वचन अपने में ही गवाही रखता है, इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं में ही गवाही रखता है। और वहाँ झूठे अभिषिक्त आएंगे, इस पर आपके पास मेरा टेप है, और यदि आप उनमें से किसी एक से कहें, ओ आप, क्या आप यीशु हैं? ओ निश्चय ही नहीं, वो इसको हाँ नहीं कहेंगे, परंतु जब ये इस पर आता है, ओ महिमा हो, मेरे पास अभिषेक है, ये वास्तविक अभिषेक है। स्मरण रखें, कैफा के पास भी यही था और भविष्यवाणी की, ऐसी बालाम के पास था और भविष्यवाणी की, परंतु इसका यहाँ अंदर से कुछ भी लेने देना नहीं, जब तक कि ये परमेश्वर का बीज ना हो, आरंभ से ही उसका जीवांश ठहराए हुआ, आप नष्ट हैं। मैं चिंता नहीं करता कि आप कितना चिल्लाते और भाषाओं में बात करते हैं, दौड़ते और चिल्लाते, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक गोखरू को उन बाकियों के साथ ही गिना जा सकता है। मैंने मूर्ति पूजकों को उठते और चिल्लाते देखा है, और नर कंकाल की खोपड़ी से लहू पीते देखा, और शैतान को बुलाते हैं, समझे। इसलिए आप कोई भी संवेदनाएं और चीजें इसे भूल जाएं, ये आपका हृदय वचन में और वो मसीह में अंदर लाएं और देखें और इसे प्रकट होने दें, बस वैसे ही जैसे कोई बीज खुलता है और उस युग के लिए अपने को घोषित करता है, ये उसमें जीवित है। लूथर किले को छोड़ और कुछ नहीं ला सकता था, ये दूसरी दूसरी चीजों को ला सकते थे। हम लोग अब गेहूं के युग में हैं। लूथर का मूल, लूथर को वास्तविक लूथर उत्पन्न करने थे, मूल पेंटिकॉस्टल को वास्तविक पेंटिकॉस्टल ही लाने थे, बस यही है। परंतु हम उस युग से आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया पेंटिकॉस्टल पर आरंभ हुई थी, और यदि पेंटिकॉस्टल कलीसिया 2000 वर्षों तक टिकी रहती, तो ये कैथोलिक से जो आज है उससे अधिक बुरी दशा में होते, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये अपने भाई अपनी बहन जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ कहता हूँ, और परमेश्वर ये जानता है, परंतु मित्रों याद रखें, मुझे वहाँ आपसे न्याय पर मिलना है, और हो सकता है कि अधिक समय ना लगे, जो कि सत्य है, मुझे उसकी गवाही देनी है। जब मैं आपके साथ प्रार्थना सभाओं में गया बीमारों के लिए प्रार्थना करने को, ये अच्छा था, परंतु जब मैं संदेश के साथ आया, यदि कोई संदेश आगे बढ़ता है तो ये सच्चा संदेश है, यदि ये सच्चा है, वास्तविक परमेश्वर के आश्चर्यकर्म है और उस संस्था में बने रहते हैं, क्योंकि यही चीज पहले ही घोषित हो चुकी है। यीशु ने जाकर और बीमारों को चंगा किया ताकि वो लोगों का ध्यान आकर्षण कर सके, फिर उसका संदेश, ये ठीक बात है। तो ये कुछ होना चाहिए जिससे परमेश्वर परिचय कराना चाहता है, वो केवल दिव्य चंगाई, उसके इस प्रकार के आश्चर्य कर्म लोगों का ध्यान खींचते थे, लेकिन इसका केंद्र वो संदेश है, यही जो है जिसे अंदर की ओर आना है। वो लोगों का पक्ष प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वे बैठकर उसकी सुनेंगे। देखिए, क्योंकि वहाँ कुछ है जो जीवन के लिए अभिषिक्त है। कुछ गेहूं के दाने भूमि पर गिरे और चिड़ियों ने उसे चुग लिया, दूसरे झाड़ियों में गिरे और कुछ तैयार भूमि में गिरे, पहले से तैयार भूमि में, और फल लेकर आए। अब ये पहली चीज है ललकार, पहली चीज तुरई, और या एक आवाज, एक ललकार, और फिर एक शब्द, और फिर एक तुरई। ललकार एक संदेश लोगों को तैयार करना, दूसरा जिला उठाने का शब्द, वही आवाज, जोर की आवाज जो संत यूहन्ना 11:38-44 में है, जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया। दुल्हन को एक साथ जमा करने को और मृतकों का पुनरुत्थान, देखा कि इसके साथ ऊपर उठाए जाएं। अब ध्यान दें, तीन चीजें घटित होती हैं। अगला क्या है? तुरही थी, एक आवाज, एक ललकार, एक शब्द, एक तुरही। अब तीसरी चीज तुरही ही है, जो कि सदा तुरही के पर्वों पर है, लोगों को पर पर बुलाती है, और ये दुल्हन का भोज होगा, मेमने का भोज दुल्हन के साथ आकाश में। समझे? पहली चीज जो आती है वो उसका संदेश है, दुल्हन को साथ जमा करते हैं। अगली चीज, सोई हुई दुल्हन का पुनरुत्थान, वो जो पीछे के युगों में मर गए थे, वे एक साथ मिलकर उठा लिए गए, और तुरही स्वर्ग में एक पर्व आकाश में। क्यों मित्रों? यही चीज है जो घटित होती है, हम ठीक वहाँ पर हैं, अब तैयार हैं, केवल एक ही चीज की, कलीसिया बाहर आ रही है, पकने के लिए पुत्र के सामने है। एक बड़ा जमघट होगा थोड़ी देर के बाद, गेहूं जल जाएगा वो डंठल, परंतु बीज खत्ते में जमा किया जाएगा। समझे? आप लोग अंधे नहीं हैं, आप लोग समझदार हैं। और यदि मैं यहाँ खड़े हुए इन बातों को पूर्वग्रह से कहूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जीवन है, क्योंकि इन बातों को कहने के लिए मैं परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ, और मुझे ये कहना ही चाहिए। और मेरा संदेश जानते हुए मेरा सारा समय वहाँ चंगाई में और आदि आदि, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करूँ, जानते हुए कि संदेश आएगा, और अब ये यहाँ पर है, और वे सात मोहरें खुल गई हैं, वे भेद और उन चीजों को दिखा रहा है जो घटित हुई, मुझे नहीं मालूम था। परंतु यहाँ एक मनुष्य ठीक इस समय यहाँ खड़ा है, जो मेरे साथ तब खड़ा था जब मैंने, श्रीमानो ये कौन सा समय है, ये संदेश प्रचार किया था, उस प्रातः ठीक जहाँ ये कहा गया कि ये होगा, ठीक वहाँ पर स्वर्ग से सात स्वर्गदूत खड़े थे, और जैसे वे उस चक्रवात में से होकर ऊपर गए, हम देख रहे थे, वे चले गए, विज्ञान ने उनका चित्र लिया सारे राष्ट्रों में होते हुए और नीचे मेक्सिको में। और वहाँ एक दिन जब मैं देख रहा था, जब मैंने सात कलीसियाई युग प्रचार करना आरंभ किया, और मैंने जैकमूर को बुलाया, एक महान धर्म विज्ञानी, मैंने कहा ये व्यक्ति वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ एक मनुष्य के पुत्र के समान खड़ा है, उसके बाल ऊन के समान श्वेत हैं। मैंने कहा वो एक युवा पुरुष है, उसके बाल ऊन के समान कैसे श्वेत हो सकते हैं? उसने कहा भाई ब्रैनम, ये उसकी महिमामय देह थी, ये कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ा। परंतु जब मैं कमरे में गया और प्रार्थना करनी आरंभ की, और उसने मुझे बताया कि ये क्या था, समझे? मैंने सदा ये प्रचार किया है कि वो एक देवत्व है, न कि एक पुरुष, वो परमेश्वर था जो देह में प्रकट हुआ, परमेश्वर, परमेश्वर का गुण, प्रेम का वो महान गुण जो यहाँ नीचे उतरा और परमेश्वर को यहाँ प्रदर्शित किया कि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का प्रेम था जिसने एक देह को बनाया, जिसमें यहोवा ने स्वयंवास किया, वो देह में परमेश्वर की परिपूर्णता था। परमेश्वर क्या था? उसने देह के द्वारा प्रकट किया, और उस देह को मरना था ताकि वो दुल्हन को अपने ही लहू के द्वारा धो सके। और ध्यान दें, केवल दुल्हन को ही नहीं धोया, क्षमा किया, परंतु वो न्यायोचित ठहरी। समझे? क्या आपने कभी न्यायोचित, जस्टिफाइड शब्द पर कोशिश की कि देखें इसका क्या अर्थ है? अब उदाहरण के लिए, यदि भाई ग्रीन ये सुने कि मैं शराब पी रहा था, मैं बुरे कार्य कर रहा था, और तब उन्होंने ये, उन्हें ये मालूम पड़े कि मैंने ये नहीं किया, तब वो आकर कहें भाई ब्रैनम मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने ये कभी किया ही नहीं, तो आप मुझे किस विषय में क्षमा कर रहे हैं? समझे? परंतु यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे क्षमा किया जा सकता है, परंतु मैं अभी धर्मी नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। परंतु जस्टिफाइड, न्यायोचित शब्द कि आपने ये कभी किया ही नहीं, निर्दोष, न्यायोचित, और फिर यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है, जब तक कि ये परमेश्वर की भूल जाने वाली पुस्तक में न डाल दिया जाए, वही केवल एक है जो ये कर सकता है। हम नहीं कर सकते, हम क्षमा कर सकते हैं परंतु भूल नहीं सकते। मैं आपको क्षमा कर सकता था, परंतु मैं आपको सदा स्मरण रखूंगा कि आपने ये बुरा कार्य किया है, तब आप धर्मी नहीं, आप क्षमा कर दिए गए। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में दुल्हन न्यायोचित है, दोष मुक्त है, उसने ये कभी किया ही नहीं, आरंभ से ही नहीं। आमीन। वहाँ खड़े हुए परमेश्वर के सद्गुणी पुत्र से ब्याहे गए, आरंभ से कभी पाप किया ही नहीं, क्यों? वो पहले से ठहराई गई है, उसे इसमें फंसाया गया था, और अब जब से उसने सत्य को सुना और आई, लहू ने उसे शुद्ध कर दिया और वो धर्मी वहाँ खड़ी है, समझे? वो उस पर कोई पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए संदेश दुल्हन को जमा होने के लिए बुलाता है। देखिए, ललकार और तुरही वही एक है। वो ऊंचे स्वर से वो ललकारा और आवाज के साथ चिल्लाया और लाजर को जगा दिया। वो ऊंची आवाज से चिल्लाया, लाजर बाहर आ, समझे? आवाज जगाती है, सोती हुई दुल्हन को जगाती है, मरे हुए सो रहे हैं। और तुरही की आवाज, और जब ये होता है ये बुलाती है। तुरही सदा से इज़राइल को तुरहियों के पर्व में बुलाती है, समझे? जो कि पेंतिकोस्तल का पर्व है, आकाश में एक महान पर्व और तुरहियों का पर्व। और अभी एक तुरही जमा होने को दोषी ठहराती है, पर्व में आओ। और अब ये आकाश में मेमने का भोज है। अब ध्यान दें, एक साथ जमा होना और दुल्हन, तुरहियों का पर्व, विवाह का भोज, हमने इसे प्रतीक में देखा है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, इसके पहले कि हम बंद करें, ध्यान दें, हमने इसे प्रतीकों में देखा है। अब यदि आप मत्ती 18:16 में पढ़ना चाहते हैं, इसमें कहा है, वे तीन जो गवाही रखते हैं, देखिए संत पहला यूहन्ना 5:7 में और आदि आदि, तीन सदा एक गवाह होते हैं। क्या ये ठीक बात है? ये एक जांच है, कुछ ऐसा जो ठीक है। तीन गवाही रखते हैं, दो या तीन के मुख से गवाही पर हर वचन स्थापित हो जाए। अब ध्यान दें, हमारे पास तीन गवाह थे, तीन गवाह हैं। अब पुराने नियम में हमारे पास पहले ही तीन उठाया जाना है, यानी रैप्चर। क्या आपको ये मालूम है, एक गवाह के समान? अब ध्यान दें, एक हनोक था, दूसरा वाला एलिया, और यीशु दूसरा वाला था। यीशु मुख्य प्रधान होने के नाते वो गवाही रखता है, समझे? वो पुराने और नए नियम के बीच में मुख्य प्रधान है, क्योंकि पहले उसे मरना है और फिर उठा लिया जाना। वो मरा, जीवित हुआ और हमारे साथ चारों ओर घूमा और फिर उठा लिया गया, क्योंकि वही मुख्य प्रधान था और दो को एक साथ जोड़ा। उसके जी उठने और उठा लिए जाने में, देखिए, इसके बाद जब उसने ये किया, उसने उस पुराने नियम को सिद्ध कर दिया। जब सब हनोक को जानते हैं कि वो रूपांतरित हो गया था, हम जानते हैं कि एलिया बवंडर के द्वारा उठा लिया गया, ये ठीक बात है, आग के रथ में, और यीशु मरा, गाड़ा गया, जी उठा और यहाँ पृथ्वी पर रहा और फिर उठा लिया गया। वो मुख्य प्रधान वहाँ तीन हैं जो गवाही रखते हैं, क्या ये ठीक बात है? अब एक उठा लिया जाना पहले ही हो चुका है, आप ये जानते हैं। अब चलिए देखें, यदि हम इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते, आइए मती का 27वां अध्याय निकालें और इसका 45वां पद, मती का 27वां अध्याय, चलिए, यदि हम इसे जल्दी से ना निकाल सकें, और देखिए, यदि हम इसमें से कुछ ले पाए तो ये हमारी सहायता करेगा। जल्दी से 27:45, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आइए पढ़ें। छठवें घंटे से लेकर नवे घंटे तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। नवे घंटे के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, एक चिल्लाहट, बड़ी आवाज, ध्यान दें। जब यीशु मरा, वो बड़े शब्द से चिल्लाया, प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। एक उठा लिया जाना हो गया है, तीन पुराने नियम में हुए, उनका जो तैयार थे, जिनके पास प्रभु का वचन आया, समझे? प्रभु का वचन हनोक के पास आया, प्रभु का वचन एलिया के पास आया, वो एक भविष्यद्वक्ता था, समझे? प्रभु का वचन यीशु था, समझे? पुराने नियम में ध्यान दें, वे पुराने नियम के संत लोग। अब जब पहले ये उठा लिया जाना हुआ, अब ध्यान दें 50वां पद, उसकी चिल्लाहट ने पुराने नियम के संतों को जगा दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी ऊंची आवाज से यीशु को जगाया, यानी लाजर को जगाया, समझे? ऊंची आवाज ने जगा दिया। और दूसरे थिस्सलुनीकियों में पूरा होता है, 4वां अध्याय, आइए इसे पढ़ें, हमने अभी कुछ मिनटों पहले पढ़ा है, समझे? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ये पहला थिस्सलुनीकियों 4:12-18, ये दूसरा उठा लिया जाना होगा, दूसरा उठा लिया जाना, दुल्हन का उठा लिया जाना है। पुराने नियम के संत लोग उसकी उपस्थिति में चले गए, स्वर्गलोक समाप्त हो गया, और पुराने नियम के संत ऊपर चले गए उसकी तेज आवाज से, जब वो चिल्लाया और अपना प्राण दे दिया, क्योंकि क्यों बलिदान उनके पापों का प्रायश्चित है जिसकी उनको प्रतीक्षा थी। विश्वास किया कि सिद्ध मेमना आ रहा था। उन्होंने बलिदान का मेमना चढ़ाया और जब वो मर गया और अपना प्राण छोड़ दिया, वो बड़े शब्द से चिल्लाया और पुराने नियम के संत लोग जाग उठे। यह ललकार और शब्द पर ध्यान दें, उसके आगमन पर यही चीजें हैं, समझे? प्राण दे दिया और जब उसने ये किया तो ये सिद्ध बलिदान था और स्वर्ग लोक खाली हो गया और पुराने नियम के संत फिर से पृथ्वी पर आ गए, इस पृथ्वी पर घूमे फिरे और उसके उठा लिए जाने पर उसके साथ प्रवेश किया। दाऊद ने वहाँ कहा, तुम सदाकाल के द्वारा ऊपर उठ जाओ। वो उठते हुए वो बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। पुराने नियम के संत उसके साथ अंदर चले गए। उन्होंने कहा, धार्मिकता का राजा कौन है? महिमा का प्रभु, सेना में सामर्थी, सेना में सामर्थी। यहाँ ये कदम ताल करते हुए आते हैं। यीशु बंधुआई को बांध ले गया और यहाँ पुराने नियम के संतों के साथ आता है और उन नए दरवाजों में चला गया और कहा, तुम अनंत दरवाजों ऊपर उठ जाओ और महिमा के राजा को अंदर आने दो। भीतर की ओर से शब्द आया, कहा, महिमा का राजा कौन है? युद्ध में प्रभु सामर्थी। दरवाजे खुल गए और यीशु एक जैवंत बंधुआई को बांध ले गया। वे जिन्होंने उस पर विश्वास किया और वचन उनके पास आया, वहाँ पुराने नियम के संत वहाँ लेटे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बंधुआई को बांध ले गया, ऊंचे पर चढ़ा, पुराने नियम के संतों को लिया और भीतर चला गया। एक उठा लिया जाना हो चुका। अगला उठा लिया जाना दूसरे थिस्सलुनीकियों में होता है, कलीसिया के लिए दुल्हन को जिलाया जाना ताकि महिमा में उठाई जाए। हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, ये देह पृथ्वी पर छूट जाएंगी, उन्हें जो सोते हैं उनसे आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरी पहले फूकी जाएगी और मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, समझे? और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके संग उठा लिए जाएंगे। उस दिन मैं सड़क के कोने पर खड़ा था और मैं सड़क पर खड़े हुए देख रहा था उस सेना दिवस की परेड को, और जब वो आगे बढ़ी सड़क पर पहुंची, मैं वहाँ अपने छोटे लड़के जोसेफ के साथ खड़ा था। वहाँ पहले बड़े विश्व युद्ध के टैंक आए, पुराने टैंक, उसके बाद शेरमन टैंक नए युद्ध के, और बड़ी बड़ी तोपें अपनी नाल के साथ, उनकी नाले टूटी हुई और आदि। उसके बाद सिपाही आए, सुनहरे सितारों वाली माताएं, और फिर वहाँ नावें आई, और इसके सामने की ओर कब्र थी उन अज्ञात सैनिकों की, और वहाँ पर सिपाही खड़ा हुआ था कब्र की सुरक्षा में, दूसरी ओर पनडुब्बी और एक नाविक दूसरी ओर, और वहाँ एक विभाजन था और एक सुनहरे तारे वाली माँ बैठी थी, उसने अपना लड़का खो दिया था। वहाँ एक युवा पत्नी खड़ी थी, अपना सिर टेबल पर रखकर रो रही थी। एक फटे पुराने वस्त्र पहने लड़का एक और बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने अपना पिता खो दिया था। मैंने सोचा, क्या ही दुख भरा है, मैं यहाँ खड़े हुए देखता हूँ, उन्हें देखता हूँ, वहाँ बूढ़े कुछ थोड़े से सिपाही बचे हैं, वहाँ जा रहे हैं अपाहिज और बूढ़े इस प्रकार के, अपने यूनिफॉर्म के साथ परंतु घमंड के साथ दिखा रहे थे क्योंकि वे अमेरिकन थे। मैंने सोचा, ओ मेरे परमेश्वर, एक दिन स्वर्ग से एक धमाका आएगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। वे पुराने नियम के संत वहाँ पीछे जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, धमाका होगा और वहाँ वो पहले आ जाएंगे और पुनरुत्थान में चले जाते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए हम पंक्ति में आ जाएंगे। ये पुरानी मरणहार देहें बदल गईं और उसकी महिमा में देह में बदल गई। ये परेड क्या ही होगी जब ये स्वर्ग की ओर आरंभ होगी, इन्हीं किन्हीं दिनों में, उस उठा लिए जाने के समय में जो आगे है। ओ घमंड के साथ यीशु मसीह के लहू को सीने पर दर्शाते हुए, समय का संदेश जो परमेश्वर का है जिसमें वे जिए, वो घड़ी जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई। अब समाप्त करते हुए देखें, दूसरा पुनरुत्थान, सब पहला बीत गया, दूसरा होने को है, अब इसी समय में, अब जल्द ही आ जाएगा। अब तीसरा वाला, दो गवाह प्रकाशित वाक्य 11:11 और 12 के, जो कि ये वाले जो बदल देते हैं मसीह के आत्मा से कि यहूदियों में गवाही दें, जैसा यूसुफ ने भाइयों के साथ किया। और स्मरण रखे, उनकी मरी हुई लोथें 3.5 दिनों तक पड़ी रहीं, तब जीवन का आत्मा उनमें समा गया और वे उठा लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। ये आपके तीनों रैप्चर यानी उठा लिए जाना है, नए नियम का है, तीन उठा लिए जाना, पुराने नियम के, वे सारे बीत गए, अब हम तैयार हैं, उठा लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संतों का उठा लिया जाना, ये बोला गया है और ये होगा। परमेश्वर कुछ भी कहता है, सारे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु वचन कभी असफल नहीं होगा। जब परमेश्वर ने वहाँ पीछे उत्पत्ति में कहा, उसने कहा उजियाला हो जाए, इसमें सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं इसके पहले कि उजियाला हो। उसने कहा ताड़ का पेड़ हो जाए, बांझ का पेड़ हो जाए, रेगिस्तान हो जाए, पहाड़ हो जाए, ये हो जाए। आप देखिए, उसने बोला और जैसे ही ये उसके मुंह से निकला वचन में, इसे प्रकट होना ही है, इसे होना है। तब एक दिन उसने अपने लोगों को बुलाया और वो एक मनुष्य से बोला जिसका नाम मूसा था, उस अग्नि स्तंभ के द्वारा एक ज्योति, पवित्र आग, और मूसा नहीं, लोग मूसा का विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने कहा उन लोगों को यहाँ पहाड़ पर ले आ। उस प्रातः सारा पहाड़ आग से भरा हुआ था, बिजली और गर्जने इस प्रकार से, और लोगों ने कहा परमेश्वर ना बोले, मूसा ही बोले, कहीं ना हो कि हम नष्ट हो जाएं। परमेश्वर ने कहा मैं उनसे इस प्रकार से और बात ना करूंगा, परंतु मैं उनके लिए एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करूंगा और मैं उसके द्वारा होकर बोलूंगा, और जो वो कहे घटित होगा तब तुम उसकी सुनना, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। अब उसने ये बोला, उसने कहा कि ये घटित होगा। इस भविष्यवक्ता को देखें, यहाँ यशाया खड़ा है, एक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, एक मनुष्य जिसके विषय में राजा के द्वारा सोचा गया, क्योंकि वह उज्जिया के संग रहा था, वो राजा जो कि एक महान पुरुष था, जिसने एक बार प्रचारक का स्थान लेने का यत्न किया और भीतर गया और उसे कोढ़ हो गया। और यही जो मैंने व्यापारियों को बताया, कभी भी प्रचारक का स्थान लेने का यत्न ना करो। नहीं श्रीमान, आप ठीक वहीं रहें जहां आप हैं, समझे? आप अपना काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है कि आप करें। यदि आप एक उंगली हैं, आप कान नहीं हो सकते। यदि आप एक कान हैं, आप नाक नहीं हो सकते, नाक या आंख, समझे? आप अपनी स्थिति में बने रहें। आपने ये संदेश सुना है उस दिन उस प्रसारण में, परमेश्वर की सेवा करने का यत्न करना। दाऊद अभिषिक्त राजा, सारे लोग चिल्ला और शोर कर रहे थे, ये ठीक था, परंतु परमेश्वर के भविष्यवक्ता से कभी परामर्श नहीं किया। एक व्यक्ति मर गया और सारा मामला गड़बड़ हो गया। परमेश्वर का पक्ष लेने का यत्न ना करें, परमेश्वर की शर्तों की प्रतीक्षा करें, उसे उसी के मार्ग से होते हुए आने दें। मैं इस बड़ी चीज को आरंभ करूंगा, मैं ये करूंगा, भाई ध्यान दें। अब दाऊद इससे अच्छा जानता था, नातान राष्ट्र में था उस दिन, उससे पूछा तक नहीं गया, बिल्कुल नहीं, समझे? उसने शतपतियों आदि से परामर्श किया, सारे लोग चिल्लाए और शोर मचाया और नाचे बजाए, उसके पास सारी धार्मिक क्रियाएं थी, परंतु ये परमेश्वर के वचन की पंक्ति में ना था और ये असफल हो गया। कोई भी चीज परमेश्वर के वचन की पंक्ति में नहीं है वो असफल हो जाएगी। केवल परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं। ध्यान दें, यशाय वो बुद्धिमान पुरुष था, वहाँ खड़ा था, अचानक से परमेश्वर के आत्मा ने उस पर प्रहार किया, वो अंतर नहीं बता सका, वो एक भविष्यवक्ता था। उसने कहा देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, एक बालक जन्मा, एक पुत्र दिया गया, उसका नाम सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थ्य परमेश्वर, सदा काल का पिता। आखिर में उसका राज्य उसके कंधे पर होगा, अंत का उसके राज्य का अंत ना होगा। वो बुद्धिमान मनुष्य कैसे कह सकता था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी? हर किसी ने उसकी प्रतीक्षा की, वो बोल दिया गया था, ये यहोवा यूं कहता था, उसे होना ही था, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था। वैसे ही जैसे ये उत्पत्ति में था, जब उसने उन बीजों के नीचे सागर में नीचे बोया, जहाँ ये बिना आकार और शून्य था और गहराई के ऊपर जल था, समझे? इसे घटित होना ही था। और एक दिन 800 वर्ष के बाद कुंवारी के गर्भ में परमेश्वर का बीज गर्भित हुआ, एक सृष्टि किया हुआ बीज, उसने पुत्र उत्पन्न किया। वही पुत्र एक दिन वहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा लाजर बाहर आ, और वो मनुष्य जो चार दिन से मरा हुआ सड़ा हुआ था, उसकी नाक गिर गई थी, बदबू, वो बाहर आया। कहा इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, आमीन, जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, परमेश्वर के पुत्र का। इसलिए ये बोला जा चुका है, इसे इसी प्रकार होना है, उठा लिए जाना होने वाला है। ओह प्रभु, मुझे स्मरण है कैलिफोर्निया में मेरा अंतिम संदेश, जहाँ के लिए मैंने सोचा था मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगा। जब मैंने ये भविष्यवाणी की लॉस एंजेलिस समुद्र के नीचे चला जाएगा, ये यहोवा यूं कहता है ये होगा, वो समाप्त हो गया, वो साफ हो गया, वो नष्ट हो गया, किस घड़ी मैं नहीं जानता कब, परंतु ये डूब जाएगा, ठीक भूकंप के बाद हिलेगा और गिर पड़ेगा। स्मरण रखें, आप में से बहुत से यहाँ खड़े हैं, वो हिला उस दिन जब स्वर्गदूत यहाँ नीचे आए और वो बिजली और आग आकाश से गिरी उस चट्टान के चारों ओर जहाँ हम खड़े थे, वहाँ पहाड़ पर से पत्थर उड़ने लगे और वहाँ दूर दूर गिरे, वहाँ तीन बार जोर से धमाका हुआ। मैंने कहा पश्चिमी किनारे पर न्याय आएगा। उसके दो दिन बाद अलास्का लगभग डूब गया था। याद रखें उसी परमेश्वर ने जिसने ये कहा कि कहा लॉस एंजेलिस नष्ट हो गया, और वो नष्ट हो गया। मैं नहीं जानता कि कब, मैं ये आपको नहीं बता सकता। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, परंतु ये भाई यहाँ पर है, मैं विश्वास करता हूँ कि था, नहीं मोजले का एक, मैं विश्वास करता हूँ वहाँ मेरे साथ सड़क पर था। मैं नहीं जानता था कि ये क्या था, जब तक मैंने घूम कर नहीं देखा था। मैंने वचन पलट कर देखा और यीशु ने कहा कफरनहूम कफरनहूम, कितना चाहा, तू जो अपने को ऊंचा उठाता है बल्कि स्वर्ग तक तू अधलोक तक नीचा किया जाएगा, क्योंकि जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि साधुओं में किए जाते तो आज तक बना रहता। और वहाँ से लगभग 150 वर्षों बाद सादों पृथ्वी में समा गया, फिर कपरनहूम भी जल में समा गया आज। और परमेश्वर का वही आत्मा जिसने कहा कि ये सारी चीजें और ये सारी चीजें की, इसने वहाँ कहा, ओ कफरनहूम नगर, जो अपने आप को स्वर्गदूतों के नाम से कहलाता है लॉस एंजलिस, तू कैसे अपने आप को स्वर्ग तक ऊंचा किया? वही जड़ और शैतान की गद्दी, देख तूने अपने आप को ऊंचा किया। प्रचारकों, ये उनके लिए कब्रिस्तान है। अच्छे लोग वहाँ जाकर चूहे के समान मरते हैं, क्या ही विनाश है। तू जो अपने को स्वर्गदूतों के नाम के द्वारा कहलवाता है, यदि वे सामर्थी काम सादोम में किए जाते जो तुझ में किए गए, तो वो आज वो खड़ा होता, परंतु तेरी घड़ी आ पहुंची है। आप ध्यान दें और देखें, यदि ये नहीं है तो मैं झूठा भ्रष्ट दिखता हूँ, समझे? वो वहाँ पर है, वो नगरी वहाँ पड़ी है। मुझे वो रात्रि स्मरण है, इसके पहले मैंने उसे देखा, मैंने दुल्हन का पूर्व दृश्य देखा, मैं वहाँ खड़ा हुआ और उस सुंदर महिला को देखा, बिल्कुल ठीक वस्त्र पहने हुए और चीजें इस ओर बढ़ रही है। वहाँ दर्शन में कोई मेरे पास खड़ा था और मैंने देखा, उन्होंने कहा दुल्हन का पूर्व दृश्य, मैंने उसे पास से निकलते हुए देखा, वे इस ओर से आए और घूम कर निकल गए। मैंने उसे आते सुना, कलीसियाएं उस ओर से आ रही थीं, वहाँ एशिया की कलीसिया आई। ओह, आप गंदगी की बातें करते हैं, यहाँ यूरोप की कलीसिया आती है, ओह प्रभु। और फिर मैंने रॉक एंड रोल की आवाज आते सुनी और कुमारी अमेरिका थी कलीसिया, उन्होंने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए थे, उनके पास अखबार के से कागज थे स्लेटी रंग के, जिन्हें अपने सामने लगा रखा था, नाच रहे थे रॉक एंड रोल, कुमारी अमेरिका की कलीसिया। उसकी उपस्थिति में खड़ा हुआ था, मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, यदि एक सेवक के समान मैं यही कर सका जो सबसे अच्छा है, ओ आप जानते हैं कि आपको कैसा अनुभव होता है। तब मैंने सोचा, परमेश्वर मुझे छिपा ले, यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ, यदि यही सब कुछ जो हमने किया है और यही जो हमने उत्पन्न किया है यही है। और फिर जब वे स्त्रियाँ निकल गईं, वे सब जो इस प्रकार का कर रही थीं और छोटे कटे बाल रंगे हुए मुंह, और जैसे ही वो इस प्रकार से निकले जिन्हें मसीह के लिए कुंवारी होना चाहिए, और जब वो इस प्रकार से निकली, मैंने अपना सर घुमाया और आप जानते हैं इसको मेरे सामने की ओर पकड़े हुए थे, ये बहुत ही अशोभनीय था उनकी पीठ की ओर, और वहाँ वे इस प्रकार से जा रहे थे, और मैंने अपना सिर घुमाया कि रोऊं इस प्रकार से, और मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकूंगा। वो वहाँ खड़ा है, मैं ये जानते हुए कि मैं कलीसिया का सेवक हूँ और यही जो मैंने उसके लिए तैयार किया। मैंने कहा, ओह परमेश्वर, मैं इसे नहीं देख सकता, मुझे मर जाने दे, मुझे यहाँ से ओझल हो जाने दे इस प्रकार से। और जैसे ही ये सब चला गया, हर बार उनमें से एक आएगा, वे एक निश्चित स्थान में जाएंगे और गिर पड़ेंगे। जैसे ही वे गए, मैंने उनकी आवाज को सुना, तब मैंने ऐसा कुछ सुना, मसीही सिपाहियों आगे बढ़ो। मैंने देखा और यहाँ छोटी लड़कियों का पवित्र किया हुआ झुंड, ठीक जिस प्रकार वे थे, सब सही कपड़े पहने हुए, उनके बाल उनकी पीठ पर लटके हुए, साफ सुथरे इस प्रकार से चल रहे थे, सुसमाचार के कदमों पर वो वचन थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे हर रास्ते से हो। मैं उनको वहाँ से निकलते हुए देख रहा था, बजाय इसके कि वे नीचे की ओर जाएं, उन्होंने ऊपर की ओर जाना आरंभ कर दिया। मैंने ध्यान दिया, उनमें से एक कोशिश कर रहा था, दो या तीन कोशिश कर रहे हैं कि पंक्ति से बाहर निकल जाएं। मैं चिल्लाया, पंक्ति में रहो, और दर्शन समाप्त हो गया, और मैं कमरे में खड़े हुए चिल्ला रहा था, पंक्ति में रहो, पंक्ति। आश्चर्य, क्या ये पहले ही बीत चुका? क्या दुल्हन पहले ही बुलाई जा चुकी है? यही है जिसमें होकर हम आज इसमें होकर निकल रहे हैं। उसे ढलना ही है और मसीह की छवि में बनना है, और मसीह वचन है, केवल यही बात है, समझे? ये वहाँ पर है वचन में, ये समझे, इसमें एक भी चीज नहीं मिलाई जा सकती। ये नहीं हो सकता जिसका एक हाथ पुरुष के समान हो और दूसरा हाथ कुत्ते के पंजे के समान हो। इसे ठीक प्रभु के वचन के समान होना है, जैसा कि वो वचन है। दुल्हन दूल्हे का भाग है, स्त्री अपने पति का भाग है, क्योंकि उसे उसके पति में से निकाला गया है। हवा आदम का भाग उसकी एक ओर से थी, और ऐसे ही दुल्हन नामधारी में से नहीं ली गई, परंतु परमेश्वर के वचन की छाती में से ली गई, इस दिन के लिए उठा लिया जाना। प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, और उसकी पुनरुत्थान की महिमा के भागी जब चुने हुए अपने घरों में जमा होंगे आकाश के उस पार, जब वहाँ नाम पुकारे जाएं, आइए हम सब वहाँ होने का यत्न करें। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे, ये बोल दिया गया है, इसे घटित होना ही है, ये घटित होगा। और छोटे लोगों, कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी नष्ट नहीं होना चाहता है। मैं आपको बता दूं, आप जो भी करते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि आप कितनी अच्छी तरह आराधनालय जाते हैं, आप कलीसिया में कितने ईमानदार हैं, ये अच्छा है, इसके विरोध में कुछ नहीं। आपको आराधनालय जाना चाहिए, आप ये करते हैं, कलीसिया में जाते रहें, परंतु जो कुछ भी है अपने रीति रिवाजों को हटा दें और सीधे सीधे मसीह में बढ़ते जाएं, क्योंकि ये इन्हीं किन्हीं दिनों में आवाज देगा और आप पशु की छाप के साथ पकड़े जाएंगे और मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्या है जब तक कि अधिक देर ना हो जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे खेद है कि आप लोगों को रोके हुए हूँ, और याद रखें मैंने उन्हें लंबे समय से रोका हुआ है, ये ठीक बात है। और भेंट जो आपने मेरे लिए ली है जिसे लेने के लिए मैंने नहीं कहा, मेरे भाई ये मेरा शिष्टाचार है, ये लेना और इसे मोटल का भुगतान और समय से अधिक, क्योंकि मैंने इसे रोक कर रखा है। मेरे पास यहाँ कुछ थोड़ी सी चीजें थी, मेरे पास उठा लिए जाने के विषय में लगभग 8-10 पन्ने और थे, परंतु देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप प्रभु से यीशु से प्रेम करते हैं? अब हमें एक मिनट के लिए शांत खड़े हो जाएं, शांति और आदर के साथ, और जो मैंने कहा उसे याद रखें। याद रखें कि हम अंत की घड़ियों में हैं। ये राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो बाइबल ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, दबे हुए हेंगे के साथ, ओ पिछड़े हुओ अब अपनों में लौट आओ। छुटकारे का दिन निकट है, मनुष्यों के हृदय भय से रुक रहे हैं, आत्मा से भर जाओ, अपने चिराग छांट लो और साफ कर लो, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा निकट है। आप जानते हैं क्या, झूठे भविष्यद्वक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य का वे इनकार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सब सत्य है, क्या हम नहीं जानते? मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा। उस कैलवरी के वृक्ष पर कितने उससे वास्तव में प्रेम करते हैं, अपने हाथ उठाएं। अब मैं चाहता हूं कि आप, जबकि हम या ये फिर से गा रहे हैं, तो जो आपके पास है उससे हाथ मिलाएं, कहें यात्री परमेश्वर आपको आशीष दे, हम यहाँ तीर्थ यात्री और परदेशी हैं। मैं उससे प्रेम करता हूँ, यही है टेबल के उस पार। मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। क्या आप उठा लिए जाने को तैयार करना चाहते हैं? कितने उठा लिए जाने में रुचि रखते हैं? कहें परमेश्वर मैं अपने पूरे हृदय से बनना चाहता हूँ। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। आपको ये गाना आता है बहन, आप जानती हैं? परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ना, मैं नहीं जानता क्या इसमें क्या है इसके लिए। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लो, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लो। अपनी आशाएं अनंत चीजों पर बनाए, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लेना। आपको ये पसंद है? जब हमारी यात्रा पूरी हो जाए, यदि आप परमेश्वर के लिए सच्चे रहे हैं, पवित्र और चमकदार आपका घर महिमा में है, आपका प्राण आप में से इसे देखेगा। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। अपनी आशाएं अनंत चीजों पर रखें, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। मैं चाहता हूँ अब आप अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। संसार के बेकार के धन का लालच ना करें, जो कि जल्द ही सड़ जाता है। स्वर्गीय धन की खोज करो, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। अपनी आशाएं अनंत चीजों पर रखें। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। अपने झुके हुए सिरों के साथ विचारों में ये जानते हुए कि हमने अपने सिरों को मिट्टी की तरफ झुका रखा है, जिसमें से कि हमें निकाला गया है। किसी दिन हम इसी में वापस चले जाएंगे, ये जानते हुए कि आपके पास एक प्राण है, उसमें आपको परमेश्वर को उत्तर देना है। और यदि आप ये अनुभव करते हैं कि आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं उस उठा लिए जाने के लिए, यदि वो आज रात्रि हो और आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना में याद रखा जाए, तो अपने हाथ उठाएं। हमारे पास वेदी पर बुलाहट देने के लिए स्थान नहीं है। आपकी वेदी आपके हृदय में है। जो भी है, अपने हृदय अपने हाथ उठाएं। परमेश्वर आपको 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 आशीष दे। ओ प्रभु, अनुभव करते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। भाई बनम, मैं वास्तव में मैं मसीह होना चाहता हूँ। मैंने होने का यत्न किया, परंतु हमेशा कुछ कमी रही। मैं ये जानता हूँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। परमेश्वर दया करे, मैं अपना हाथ उठाता हूँ, मुझ पर दयावान हो। अब कुछ 20 या 30 हाथ उठे हुए हैं पहले ही इस छोटे झुंड में, और भी उठ रहे हैं। प्रिय परमेश्वर, आप जानते हैं कि इन हाथों के पीछे क्या है, नीचे उनका हृदय। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, केवल एक चीज है जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, कि मैं सत्य बताऊँ। और प्रिय परमेश्वर, ये लोग बचना चाहते हैं, ये लोग वास्तव में चाहते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भावनाएं नहीं चाहते, कुछ काम चलाओ, कुछ नामधारी की पद्धति, कोई मतसार, कोई सिद्धांत मत जो जोड़ दिया गया हो। पिता, ये समझते हैं कि इसके लिए विशुद्ध बिना मिलावट का परमेश्वर का वचन चाहिए। हर चीज समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी, परंतु ये नहीं। और यदि हम ये वचन हो जाए तो पृथ्वी हमारे नीचे से नष्ट हो जाएगी, परंतु हम नहीं नष्ट होंगे, क्योंकि हम वचन हैं, दूल्हे की दुल्हन। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे। पिता, ये मेरी सच्ची प्रार्थना है। और मुझे क्षमा करें पिता, कि आज रात्रि इतना अधीर हूँ, यहाँ देर हो रही है, और अस्थिर टूटे हुए शब्द बोल रहा हूँ, और आधे अधूरे। जो जैसा भी है, महान पवित्र आत्मा, इन सबको अपने दिव्य मार्ग से होते हुए जोड़ लें, और इनके हृदयों को मेरे हृदय से होते हुए इन लोगों को प्रदान कर दें। मेरे हृदय में जो उद्देश्य और विषय निष्ठा है, मेरी आपकी ओर है। क्या आप प्रभु आप नहीं करेंगे? और उन्हें बचा लें जो बचाए जा सकते हैं, अपने पास खींच लें प्रभु, और उन्हें पाए हम उस उठा लिए जाने वाली घड़ी के लिए तैयार हो जाएं, जो कि बहुत ही निकट है, क्योंकि मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब बेदारी के अध्यक्ष।